आगे सबक देखिए भाई, किताब उशिर का अशिर का तु जाइजतुन ली अन्नहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुइसा वन्नासु यतआमलून बिहा फकररहुम अलैह। قال الشركة ضربان شركة أملاك وشركة عقود فشركة الأملاك العين يرثها رجلان أو يشتريانها فلا يجوز لأحدهما أن يتصرف في نصيب الآخر إلا بإذنه وكل واحد منهما في نصيب صاحبه كالأجنبي। भाई गुज़श्ता सबक में हम किताबुल मफ़्क़ूद पढ़ रहे थे। मैंने बतलाया कि फ़क़्द का माना है किसी चीज का खो देना, किसी चीज का गुम कर देना। तो मफ़्क़ूद वो शख्स जो गायब है, जिसकी न जिंदगी का पता है न मौत का पता है न ये पता है कि वो कहां है, तो इसको मफ़्क़ूद कहते हैं। अब इसके माल का क्या हुक्म है और इसकी बीवी उसका क्या हुक्म है, तो साहिब हिदाया ने बतलाया कि अगर कोई शख्स इस तरह गुम हो जाए कि उसका कुछ पता नहीं, तो काजी किसी निगरान को मुकर्रर कर देगा जो उसके माल की हिफाजत करे, उसकी निगरानी करे, और इसके हुकूक यानी कोई दुयून वगैरह हैं या अमानतें हैं उनको वसूल करे। अलबत्ता ये वकील जिसे काजी ने मुकर्रर किया है, ये खुसूमत नहीं कर सकता उन अकदों के अंदर, उन दुयून के अंदर जो उस मफ़्क़ूद ने सरंजाम दिए थे। अलबत्ता ये निगरान खुद कोई अकद वगैरह करता है तो उनमें ये खुसूमत कर सकता है, क्योंकि ये उन अकदों में असील है भाई, असील है। और आपको साहिब हिदाया ने यह भी बतलाया था कि एक वकील बिलकब्ज है जो काजी ने मुकरर किया है, और एक वकील बिलकब्ज वो है जिसे जिसे मालिक मुकरर करता है। तो वो वकील बिलकब्ज जिसे मालिक ने मुकरर किया है, वो इमाम साहिब के नजदीक उस मदयून से खुसूमत कर सकता है, जबकि साहिबैन फरमाते हैं कि नहीं, वो खुसूमत नहीं कर सकता। तो मालूम हुआ मालिक का जो वकील है उसके अंदर साहिबैन और इमाम साहिब का इख्तिलाफ है। अलबत्ता ये जो काजी का वकील है, ये जो निगरान है, ये तो बिल इत्तेफाक हमारे तीनों इम्मा के नजदीक ये खुसूमत नहीं कर सकता। तो काजी के वकील को खुसूमत की इजाजत नहीं, क्योंकि इस सूरत में कजा अलल गाइब लाजिम आती है, और कजा अलल गाइब यानी गाइब आदमी के खिलाफ तो काजी का फैसला दुरुस्त नहीं है। अलबत्ता अगर काजी किसी मसले में गाइब के खिलाफ फैसला दे दे तो वह नाफिज होगा। वजह यह कि यह मुश्तहद फी मसला है। हमारे नजदीक तो कजा अलल गाइब जायज नहीं, लेकिन इमाम शाफई रहमहुल्ला के नजदीक कजा अलल गाइब जायज है। मालूम हुआ इस मसले में इज्तिहाद की गुंजाइश है। कुछ फुकहा इसके जवाज की तरफ गए हैं तो कुछ फुकहा इसके अदम जवाज की तरफ गए हैं। और मुज्तहद फी मसले के अंदर अगर काजी की राय एक तरफ हो जाए और वो उसका फैसला कर दे तो काजी का वो फैसला नाफिज हो जाता है भाई। और फिर साहिब हिदाया ने यह भी बतलाया कि वो जो गायब आदमी है उसके माल की काजी हिफाजत करेगा, और अगर किसी माल के खराब होने का एहतमाल है तो काजी उसको बेच भी सकता है। और उस गायब शख्स की बीवी और उसके उसूल और फुरू में जो मुस्तहिक हैं नफके के, काजी उन पर खर्च भी करेगा। मैंने आपको बतलाया था कि बीवी का खर्चा तो हर हाल में खावंद पर आता है, चाहे बीवी मालदार ही क्यों ना हो, क्योंकि बीवी ने खावंद के लिए अपने आप को घर में रोक कर रखा है, लिहाजा उसका खर्चा खावंद के जिम्मे होगा। जबकि उसूल और फुरू जो हैं यानी औलाद और ऊपर बाप दादा वगैरह जो हैं, उनका खर्चा किसी शख्स पर उस वक्त आता है जब उनका माल ना हो। अगर एक शख्स की नाबालिग औलाद है और उनका अपना माल मौजूद है तो फिर याद रखो असल यही है कि हर शख्स का खर्चा उसके अपने माल में होता है, लिहाजा इस सूरत में उस सगीर का खर्चा उसके बाप पर नहीं आएगा भाई। तो ये जो बीवी और उसूल और फुरू हैं, इनका खर्चा बगैर कजाए काजी के ही इंसान पर वाजिब होता है जब इनको हाजत हो गई। और अलबत्ता कुछ करीबी महरम रिश्तेदार ऐसे हैं कि वहां पर खर्चा कजाए काजी से वाजिब होगा, बगैर कजाए काजी के वाजिब नहीं होगा। जैसे भाई है, चचा है, फूफी है, मामू है, खाला है वगैरह भाई, तो इनका खर्चा कजाए काजी की वजह से वाजिब हो सकता है। मैंने बतलाया कि औलाद में से या ये करीबी महरम रिश्तेदारों में से अगर बालिगा मुअन्नस है और उसका माल नहीं है तो उसका खर्चा इस करीबी रिश्तेदार पर आएगा, और बालिग मर्दों में से सिर्फ जो अपाहज हैं या माजूर हैं और उनके पास माल नहीं है उनका खर्चा इस आदमी पर आएगा भाई। तो वो रिश्तेदार जिनमें कजाए काजी के बगैर ही इंसान पर नफका वाजिब होता है, यानी बीवी और उसूल और फुरू जो हैं, इनका खर्चा तो काजी अदा करेगा इस गायब के माल में से। अलबत्ता बाकी करीबी महरम रिश्तेदार अगर उनके हक में काजी उस गायब की मौजूदगी में ही फैसला कर चुका था फिर तो काजी उनको भी खर्चा देगा, लेकिन अगर उस गायब शख्स की मौजूदगी में काजी ने यह फैसला नहीं किया था तो अब इस गायब शख्स की गैर मौजूदगी में काजी उन लोगों का नफका मुकर्रर नहीं कर सकता, क्योंकि यह कजा अलल गाइब है और कजा अलल गाइब तो इंदल अहनाफ जायज नहीं है भाई। और फिर साहिब हिदाया ने बतलाया कि यह तो वो सूरत है जब उस गायब आदमी का माल काजी के कब्जे में हो, और अगर गायब आदमी का माल किसी अजनबी के कब्जे में है, मसलन बतौर अमानत के है या बतौर दैन के है, और वो उस माल का भी इकरार करता है और उस गायब के बीवी बच्चों का भी इकरार करता है, तो फिर इस सूरत में भी काजी हुक्म देगा उस अजनबी को कि वो इस गायब के बीवी बच्चों पर खर्च करे। तो ये उस सूरत में है जब वो अजनबी जिसके पास अमानत या देन है वो दोनों चीजों का इकरार कर रहा है, और अगर काजी को इन दोनों का इलम है तो फिर उसके इकरार की कोई हाजत नहीं। और अगर काजी को इन दोनों चीजों में से एक चीज का इलम है, यानी उसे वदीयत या देन का इलम है या इन बीवी बच्चों का इलम है कि ये उस गायब आदमी के बीवी बच्चे हैं, तो फिर इस सूरत में जिस चीज का काजी को इलम नहीं है उसमें उस मदयून या मुदा से जो है इकरार करवा लिया जाएगा, और फिर काजी उसके बीवी बच्चों को नफका देने का हुक्म देगा भाई। लेकिन अगर इन दो में से किसी चीज का काजी को इलम नहीं है और वो मदयून या मुदा भी उसका इकरार नहीं कर रहे तो फिर काजी उसके बीवी बच्चों पर खर्च करने का हुक्म नहीं दे सकता भाई। और अगर ये मुदा या मदयून जो है इन्होंने काजी के हुक्म के बगैर ही उस गायब के बीवी बच्चों पर खर्च किया तो फिर याद रखो वो गायब शख्स अगर आ जाए तो वो इनसे जमान ले सकता है, क्योंकि उसने ये चीज इनके पास बतौर अमानत के रखवाई थी या इन पर उसका देन था और इन्होंने उस गायब शख्स की इजाजत के बगैर ही इस माल को खर्च किया है जिसकी इनको विलायत नहीं थी, तो वो गायब शख्स इनसे वो पूरा माल वसूल कर सकता है भाई। और उसके बाद साहिब हिदाया ने बतलाया कि काजी जो है गायब शख्स और उसकी बीवी में जुदाई नहीं करवा सकता। अल्बत्ता इमाम मालिक रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि जब चार साल गुजर जाएं तो फिर काजी उस गायब शख्स और उसकी बीवी के दरमियान जुदाई का फैसला कर देगा, और फिर वो औरत वफात की इद्दत गुजारेगी और उसके बाद वो जहां चाहे निकाह कर सकती है। वजह यह कि हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हो के जमाने में ऐसा ही एक मसला पेश आया था, एक आदमी जो है वो गायब हो गया था और फिर चार साल के बाद हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हो ने उसकी बीवी की जुदाई का फैसला किया और उसको आगे निकाह की इजाजत दी, और बाद में फिर कुछ मुद्दत के बाद वो शख्स दोबारा आ गया और उसने जिक्र किया कि मुझे जिन्नात काबू करके ले गए थे। तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह फरमाते हैं हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के इस फैसले से मालूम हुआ कि चार साल के बाद काजी इस गायब शख्स की बीवी की इससे जुदाई का फैसला कर सकता है, और नीज वो इस गायब शख्स को कियास करते हैं ऐनीन पर और ईला करने वाले पर। जैसे ईला करने वाला वो शख्स जिसने बीवी के पास चार महीने या इससे ज्यादा न जाने की कसम खाई है, तो इस शख्स ने बीवी का हक रोक लिया क्योंकि सोहबत के अंदर बीवी का भी हक है। यह इसी तरह जो नामर्द है जो बीवी के साथ सोहबत पर कादिर नहीं, यानी ऐनीन जो है उसने भी बीवी का हक रोक लिया है, तो जैसे वहां काजी जुदाई का फैसला कर सकता है तो यहां गायब में भी काजी जुदाई का फैसला कर सकता है। तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह ने इस गायब शख्स को कियास किया ईला करने वाले पर और ऐनीन पर, और ईला करने वाला शख्स अगर चार माह तक बीवी से सोहबत न करे तो वहां तलाक बाइन हो जाती है। तो चार का आदद ईला से ले लिया और साल जो है वो ऐनीन से ले लिया, क्योंकि ऐनीन को एक साल की मुद्दत दी जाती है इलाज के लिए, तो इन दोनों को मिलाया तो चार साल की मुद्दत तक अगर गायब शख्स न आया तो फिर इनमें जुदाई करवा दी जाएगी, दोनों मुशाबहतों पर अमल करते हुए कि इस गायब शख्स की मुशाबहत है ईला करने वाले के साथ भी और ऐनीन के साथ भी। जबकि हमारी दलील यह है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने एक गायब शख्स की बीवी के बारे में फरमाया इन्नहा मरअतुहु हत्ता यातियहल बयान, कि यह उसी शख्स की बीवी है जब तक बयान आ जाए। फिर हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का एक कौल है, वो फरमाते हैं एक गायब शख्स की बीवी के बारे में हिया मरअतुनु बतुलियत, की ऐसी औरत है जिसे आजमाइश में डाल दिया गया है। फल तस्बिर हत्ता यस्तबीन मौतुन औ तलाकुन, तो इसको सबर करना चाहिए यहां तक कि मौत या तलाक का पता चल जाए। तो मालूम हुआ हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का यह कौल जो है यह बयान है उस इजमाल की जो हुजूर अलैहिस्सलाम के कौल में था। हुजूर अलैहिस्सलाम के कौल में बयान का लफ्ज आया था और वो मुजमल था, तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का यह कौल उसके लिए बयान बनकर वाकई हुआ है। मालूम हुआ कि गायब शख्स और उसकी बीवी में काजी जुदाई नहीं करवा सकता। और नीस हम जवाब देते हैं इमाम मालिक रहमतुल्लाह को कि आप इस गायब शख्स को ईला करने वाले पर कियास नहीं कर सकते, इसलिए क्योंकि ईला तो खुद तलाक के हुक्म में है जबकि गायब होना यह तो तलाक के हुक्म में नहीं है। और नीस हम कहते हैं कि आप इस गायब शख्स को ऐनीन पर भी कियास नहीं कर सकते, इसलिए क्योंकि गायब शख्स की तो वापसी की उम्मीद है, वो किसी वक्त वापस आ जाएगा, जबकि ऐनीन के तो तंदुरुस्त होने का अब एहतमाल नहीं है जब एक साल तक वो तंदुरुस्त ना हो सका। और फिर इंद अल अहनाफ जब वो गायब शख्स की उम्र 120 साल हो जाए तो अब मालूम हुआ यकीनन वो मर चुका होगा, तो फिर काजी जुदाई का फैसला कर देगा। जबकि एक रिवायत के मुताबिक जब उसके हम उम्र मर जाएं, और एक रिवायत के मुताबिक जब उस गायब शख्स की उम्र 100 साल हो जाए, और एक रिवायत के मुताबिक जब उस गायब शख्स की उम्र 90 साल हो जाए। जबकि बास फुकहा फरमाते हैं कि ज्यादा मुनासिब यह है कि कोई मकदार भी यहां मुकर्रर नहीं की जाए, बल्कि यह अहवाल जमाना के मुताबिक देखा जाएगा कि किस जमाने में लोगों की उम्र कितनी होती है। जब उतना वक्त गुजर जाए तो फिर काजी जुदाई का फैसला कर देगा। भाई अलबत्ता मैंने बताया आजकल अहनाफ जरूरत और हाजत की वजह से इमाम मालिक रहमतुल्लाह के कौल पर फतवा देते हैं। अगर एक शख्स गायब हो गया है और उसका कुछ अता पता मालूम नहीं तो चार साल बाद उसकी बीवी का उससे जुदाई का फैसला कर दिया जाएगा। और फिर जब काजी जुदाई का फैसला कर देगा तो ये काजी ने मौत का हुक्म लगा दिया, लेकिन ये मौत हुक्मी भी मौत हकीकी के दर्जे में है, लिहाजा अब ये जो गायब शख्स है इसका माल इसके वारिसों में तकसीम कर दिया जाएगा। मैंने आपको बतलाया था कि ये जो मफकूद है अपनी जात के एतबार से ये इसको जिंदा शुमार किया जाता है और गैर के एतबार से इसको मुर्दा शुमार किया जाता है, लिहाजा ये जिंदा शुमार है, लिहाजा इसीलिए इसका माल इसके वारिसों में तकसीम नहीं होगा यहां तक कि इतने साल गुजर जाए जिसमें इसकी मौत यकीनी हो, तो फिर काजी जुदाई का फैसला करेगा और फिर उसके बाद इसका माल वारिसों की तरफ मुंतकिल होगा और दूसरों के हक में यह मफकूद जो है मुर्दा शुमार होगा। लिहाजा इसके जिन वारिसों का इंतकाल हो जाए तो ये उनका वारिस नहीं बनेगा, यानी उस माल का मालिक नहीं बनेगा, अलबत्ता इसका हिस्सा इसके लिए मौकूफ रखा जाएगा, इसका हिस्सा इसके लिए मौकूफ रखा जाएगा कि शायद ये वापस आ जाए। वजह यह कि मफकूद पर जो हम जिंदगी का हुक्म लगाते हैं वो इस्तेसहाब हाल की वजह से है। मैंने आपको बतलाया था इस्तेसहाब हाल का माना यह है हाल को मुसाहिब बनाना, इस्तेसहाब में सीन किस लिए है? तलब के लिए, मुसाहबत को तलब करना यानी मुसाहिब बनना, हाल का मुसाहिब बनना यानी हाल को माजी का मुसाहिब बना दिया जाता है, साथी बना दिया जाता है। तो एक चीज का जो हुक्म माजी में था वही हुक्म हाल में भी दे दिया जाता है। जैसे जंगल के अंदर पानी मिला किसी शख्स को, अब मालूम नहीं ये पाक है या नापाक है, तो इस्तेसहाब हाल के जरिए इस पर पाक होने का ही हुक्म लगा दिया जाएगा, क्योंकि ये पानी बारिश का पानी है और बारिश का पानी तो पाक होता है। तो माजी के अंदर जब ये पाक था तो फिलहाल भी वही हुक्म लगा दिया जाएगा। ये क्या है? इस्तेसहाब हाल यानी इबका उमाकाना अला माकाना, एक चीज को बाकी रखना उसी वसफ पर जिस वसफ पर वो माजी के अंदर था भाई। और इस्तेसहाब हाल याद रखो ये दफा की दलील तो बन सकता है, इस बात की दलील नहीं बन सकता, इसके जरिए किसी चीज को साबित नहीं किया जा सकता। अलबत्ता इसके जरिए किसी हुक्म को दफा किया जा सकता है यानी उसको आने से रोका जा सकता है। तो ये जो गायब आदमी को जिंदा शुमार किया गया ये इस्तेसहाब हाल की वजह से, और इस्तेसहाब हाल जो है वो दफा की दलील तो बन सकता है, इसकी वजह से कोई इसके माल का मालिक नहीं बनेगा, लेकिन इस्तेसहाब हाल जो है वो इस्तेहकाक मिल्कियत का सबब नहीं बन सकता कि इसके जरिए मिल्कियत साबित हो जाए। लिहाजा ये जो गायब आदमी है ये अपने मूरिस का वारिस नहीं बनेगा यानी उस माल का मालिक नहीं बनेगा। हां अलबत्ता माल इसके लिए रोक कर रखा जाएगा कि शायद ये वापस आ जाए भाई। और नीज इसी तरह अगर इस गायब शख्स के लिए किसी ने वसीयत की है तो उसके हक में भी इस गायब को मुर्दा शुमार किया जाएगा, तो ये उस माल का मालिक नहीं बनेगा। क्योंकि मैंने आपको बतलाया था कि अल वसीयत उख्तुल मीरासी, कि वसीयत जो है मीरास की बहन है, और मीरास जैसे उसका हुक्म मौत के बाद जारी होता है इसी तरह वसीयत का हुक्म भी मौत के बाद जारी होता है। और जो शख्स मूरिस के मरने से पहले मर चुका हो वो वारिस नहीं बनता, उसे मीरास नहीं मिलती, इसी तरह उसको वसीयत भी नहीं मिलती अगर उस मूसा लहू का इंतकाल पहले हो चुका हो। तो यहां इस गायब को मुर्दा शुमार करेंगे, लिहाजा ये उस वसीयत के माल का भी मुस्तहिक नहीं होगा। तो अब इस गायब शख्स के लिए वरासत में से कितना माल रोका जाएगा? तो बतलाया था कि वो वारिस के गायब शख्स अगर मौजूद भी होता तो उसकी वजह से उनके हिस्से पर कोई असर ना पड़ता, तो उनको तो उनका पूरा हिस्सा दे दिया जाएगा क्योंकि उनके हिस्से को तो रोकने का कोई फायदा नहीं है। और वो वारिस कि मफकूद अगर मौजूद होता तो उनके हिस्से कम हो जाते तो फिर उनको कम हिस्सा दे दिया जाएगा, और वो वारिस कि अगर मफकूद मौजूद होता तो वो पूरे तौर पर महरूम हो जाते तो उनको कुछ भी नहीं दिया जाएगा, उनका सारा हिस्सा रोक लिया जाएगा। और ये इसी तरह है जैसे हमल का मसला है, जैसे हमल के लिए माल को रोक लिया जाता है इसी तरह इस गायब के लिए भी माल को रोक लिया जाएगा भाई। बात समझ में आ गई। अब आइए आज के सबक पर। किताबु शिरकति अशिरकतु जाइज़तुन लिअन्नहु अलैहि सलातु वस्सलामु बुइसा वन्नासु यतआमलून बिहा फकररहुम अलैह। किताबु शिरकत भाई, इसके अंदर साहिब हिदायत शिरकत के मसाइल बयान फरमाएंगे। साहिब हिदायत आपको बतलाएंगे कि शिरकत दो किस्म पर है, एक शिरकत अमलाक है और एक शिरकत उकूद है। शिरकत अमलाक भाई यानी मिल्कियत के अंदर शरीक होना, जैसे दो आदमी पैसे मिलाकर एक गाड़ी खरीद लेते हैं, 10 लाख आपने मिलाए और 10 लाख आपके साथी ने मिलाए और दोनों ने मिलकर एक 20 लाख वाली गाड़ी खरीद ली, तो देखो अब इस गाड़ी में आप दोनों साथी शरीक हैं, निसफ हिस्सा आपका है और निसफ हिस्सा आपके साथी का है, तो इसको कहते हैं शिरकत अमलाक। या इसी तरह दो आदमियों ने मिलकर जमीन खरीद ली तो इस जमीन के अंदर दोनों साथी शरीक हैं, जमीन के हर हर जुज के अंदर दोनों का हिस्सा है, जमीन का कोई एक जुज एक टुकड़ा भी ऐसा नहीं जिसमें दोनों की शिरकत ना हो। हां अलबत्ता जब वो इसको तकसीम कर लेंगे कि ये निसब जमीन आपकी हो गई और ये वाली निसब जमीन मेरी हो गई तो अब दोनों के हिस्से अलग हो गए, लेकिन इससे पहले जमीन के हर हर जुज में दोनों शरीक थे, उससे पहले दोनों में से एक भी नहीं कह सकता था कि ये वाला हिस्सा जमीन का मेरा है, क्योंकि हर हर जुज में दोनों शरीक हैं। इसको कहते हैं शिरकत अमलाक भाई। या इसी तरह एक आदमी ने एक चीज दो आदमियों को तोहफे में दे दी, एक आदमी ने आपको और आपके साथी को गाड़ी तोहफे के तौर पर दे दी, तो आप इस गाड़ी के अंदर आप दोनों शरीक हैं। या इसी तरह आपकी और जैद की गंदुम अलग अलग पड़ी हुई थी, आप दोनों ने उसको मिला दिया, तो देखो अब इस गंदुम के अंदर आप और जैद दोनों शरीक हो गए। तो ये क्या है? शिरकत अमलाक, कि एक चीज की मिल्कियत में शरीक हो जाना। और दूसरी है शिरकत उकूद भाई, जो यहां साहिब हिदाया बयान फरमाएंगे और जिसके लिए ये बाब जिक्र किया जा रहा है भाई। शिरकत उकूद ये है कि दो आदमी आपस में शिरकत का आकद कर लें कि हम दोनों मिलकर कारोबार करेंगे या मिलकर तिजारत करेंगे, मैं जो भी बेउशीरा करूंगा तो उसके अंदर उस नफे के अंदर आपका भी हिस्सा होगा। दूसरा कहता है मुझे कबूल है, तो ये जो दोनों ने अकद कर लिया आपस में और जिसकी वजह से दोनों नफे के अंदर आपस में शरीक होंगे, तो इसको शिरकत उकूद कहते हैं जी। देखिए किताब पर, किताब उस शिरकती, ये किताब है शिरकत के बयान में। अशिरकतु जाइज़तुन, शिरकत जो है वो जायज है। लिअन्नहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुइसा वन्नासु यतआमलून बिहा, लिअन्नहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुइसा, दलील जिक्र कर रहे हैं कि शिरकत क्यों जायज है। कहते हैं क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा गया, यानी उनको पैगंबर बनाकर भेजा गया। वन्नासु यतआमलून बिहा, इस हाल में के लोग जो है आपस में शिरकत के मुआमलात करते थे। फकर्ररहुम अलैही, तो हुजूर अलैहि सलाम ने उनको इस पर बरकरार रखा, यानी हुजूर अलैहि सलाम ने मना नहीं फरमाया। और यह दलील है शिरकत के जायज होने की, क्योंकि हुजूर अलैहि सलाम शरी अहकाम को लेकर आए थे, तो अगर यह शिरकत जायज ना होती तो हुजूर अलैहि सलाम इसको बयान फरमाते, तो हुजूर अलैहि सलाम ने शिरकत से मना नहीं फरमाया, मालूम हुआ शिरकत जायज है भाई। तो कहते हैं अशिरकतु जाइज़तुन, शिरकत जायज है। लिअन्नहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुइसा, इसलिए क्योंकि हुजूर अलैहि सलाम को भेजा गया। वन्नासु यतआमलून बिहा, और लोग बाहम शिरकत के मामलात करते थे। फकर्ररहुम अलैहि, तो हुजूर अलैहि सलाम ने लोगों को इस पर बरकरार रखा। काला, साहिब कुदूरी फरमाते हैं अशिरकतु जरबानी, की शिरकत दो किस्म पर है, शिरकतु अमलाकिन व शिरकतु उकूदिन, एक शिरकत अमलाक है और एक शिरकत उकूद है। फशिरकतुल अमलाकी, तो शिरकत अमलाक जो है, अलआइनु यरिसुहा रजुलानी, अलआइनु वो मुआयन चीज, यरिसुहा रजुलानी की जिसके वारिस हो जाए दो आदमी भाई। वरासत के अंदर दो भाइयों को एक गाड़ी मिल गई या एक घर मिल गया, तो देखो इस गाड़ी और घर के अंदर दोनों शरीक हैं भाई। तो कहते हैं फशिरकतुल अमला की, तो शिरकत अमलाक जो है, अल आइन वो मुआयन चीज है, या रिसुहा रजुलानी के उसके वारिस हो जाए दो आदमी, अव यश्तरियानिहा या वो मुआयन चीज की जिसे दो आदमी खरीद लें। फला यजूज़ु लिअहदिहिमा, यहां से शिरकत अमलाक का हुक्म बयान फरमा रहे हैं कि देखो शिरकत अमलाक के अंदर एक ही चीज के अंदर दो या ज्यादा आदमी शरीक होते हैं, तो हर शख्स जो है अपने हिस्से में तो तसर्रुफ कर सकता है, दूसरे के हिस्से में तसर्रुफ नहीं कर सकता जी। दूसरे के हिस्से में तसर्रुफ नहीं कर सकता। मसलन दो आदमियों ने मिलकर एक गाड़ी खरीदी है, तो इस गाड़ी के अंदर आधा हिस्सा एक का है और आधा हिस्सा दूसरे का है भाई, तो इनमें से हर शरीक अपने हिस्से में तसर्रुफ कर सकता है, यानी दोनों में से एक शरीक अपना हिस्सा बेचना चाहता है किसी तीसरे आदमी के हाथ तो वो बेच सकता है, मसलन जैद और अमर ने दोनों ने मिलकर एक गाड़ी खरीदी है और दोनों के आधे आधे पैसे थे, तो गाड़ी के अंदर निसफ हिस्सा जैद का है, निसफ हिस्सा अमर का है। जैद अपना हिस्सा खालिद के हाथ बेचता है और खालिद से कहता है कि इस गाड़ी के अंदर आधा हिस्सा मेरा है, लिहाजा तुम अगर ये मेरा हिस्सा खरीदना चाहते हो तो तुम खरीद लो, अब तुम फिर अमर के साथ शरीक हो जाओगे। आधा हिस्सा अमर का होगा और आधा किसका हो जाएगा? खालिद का हो जाएगा। तो देखो जैद ने अपना हिस्सा बेचा है, लेकिन अमर के हिस्से को जैद नहीं बेच सकता क्योंकि वो अमर का हिस्सा है, उस पर जैद को विलायत हासिल नहीं है भाई। तो कहते हैं फला या जूजुली अहदिहिमा, तो जायज नहीं है दोनों में से किसी एक के लिए भी तसर्रफ़ फी नसीबिल आखरी कि वो दूसरे के हिस्से में तसर्रुफ करे, इल्ला भी इस नहीं मगर उसकी इजाजत से। हां अगर वो दूसरा इजाजत दे देता है कि मेरा हिस्सा भी बेच दो जी। तो ये जैद अपना और अमर दोनों का हिस्सा खालिद को बेच देता है, तो देखो ये अमर की इजाजत से उसका हिस्सा बेचा है, फिर ये जायज है भाई। तो जायज नहीं है दोनों में से किसी एक के लिए भी कि वो दूसरे के हिस्से में तसर्रुफ करे, इल्ला भी इज नहीं मगर उसकी इजाजत से। वकुल्लु वाहिदिन मिन्हुम मा फी नसीबि साहिबिही, और दोनों में से हर एक अपने साथी के हिस्से में, कल अजनबी, ये अजनबी की तरह है। वहां दही शिरकत यतहक्ककु फी गैरिल मज़कूर फिल किताबी, भाई कुदूरी के अंदर तो ऊपर मतन के अंदर आया शिरकत अमलाक की मिसाल जिक्र की साहिब कुदूरी ने, अल आइनु यरिसुहा रजुलानी औ यश्तरियानिहा, वो मुअय्यन चीज के जिसके वारिस हो जाएं दो आदमी या जिसको दो आदमी मिलकर खरीद लें। तो सिर्फ दो सूरतें जिक्र की शिरकत अमलाक की, एक वरासत और एक खरीदना भाई। साहिब हिदाया बतला रहे हैं कि शिरकत अमलाक सिर्फ इन्हीं दो चीजों में नहीं होती और चीजों में भी होती है भाई, और उसको वो बयान फरमाएंगे। जैसे एक ही गाड़ी दो आदमियों को तोहफे के तौर पर दे दी जाए, तो कहते हैं वहाद ही शिरकत, और ये वाली जो शिरकत है यानी शिरकत अमलाक, यतहक्ककु, ये पाई जाती है, फी गैरिल मज़कूर फिल किताबी, उस चीज के अंदर भी जो जिक्र नहीं की गई इस किताब के अंदर यानी कुदूरी के अंदर। ये शिरकत उन चीजों में भी पाई गई जो किताब में यानी कुदूरी में जिक्र नहीं की गई। कमा इदत तहा बारा जुलानी, अब सूरतें जिक्र कर रहे हैं शिरा और वरासत के अलावा और सूरतें। कमा इदत तहबरा जुलानी आयनन, इतहबा यतहिबू के माने हिबा कबूल करना। कमा इदत तहबरा जुलानी, जैसे दो आदमियों ने हिबा कबूल कर लिया, आयनन कोई मुअय्यन चीज को, एक ही गाड़ी दो आदमियों को हिबा की गई और उन्होंने हिबा कबूल कर लिया, उस गाड़ी पर कब्जा कर लिया, तो ये दोनों इस गाड़ी के मालिक हैं और इसमें शिरकत अमलाक है भाई, दोनों की मिल्कियत है भाई। तो कहते हैं कमा इदत तहबरा जुलानी आइनन, जैसे दो आदमियों ने एक मुअय्यन चीज को बतौर हिबा के कबूल कर लिया, औ मलका हा बिल इस्तिलाई, या दो आदमी मालिक बन गए एक मुअय्यन चीज के, बिल इस्तिलाई, गलबे के जरिए। भाई आप पढ़ चुके हैं कि अहले हर्ब का माल हमारे लिए मुबाह है क्योंकि हम अहले हर्ब से हालत जंग में हैं, तो लिहाजा बाज औकात उनके लोग आते हैं हमारे लोगों का माल छीन कर ले जाते हैं, और बाज औकात मुसलमानों में से कोई जाता है और उनका माल छीन कर ले आता है। तो अब दो मुसलमान गए और वो दारुल हर्ब में से किसी का माल छीन कर ले आए, तो अब ये दोनों ने मिलकर छीना है, मिलकर उसे लाए हैं, लिहाजा ये दोनों इसमें शरीक हैं, तो ये शिरकत अमलाक है भाई। तो कहते हैं औ मलका हा बिल इस्तिलाई, या वो दो आदमी किसी मुअय्यन चीज के मालिक बन गए, बिल इस्तिलाई, गलबे के जरिए। औ अविख्तलता मालुहुमा मिन गैर सुनई अहदिहिमा, या दोनों का माल मिल गया, मसलन जैद और अमर की गंदुम आपस में मिल गई, तो इस सूरत में दोनों अब इस गंदुम के अंदर शरीक हो गए। और इसमें फिर दो सूरतें, हो सकता है ये दोनों अपनी रजामंदी से ये गंदुम आपस में मिला दें, इस सूरत में भी शिरकत अमलाक आ जाएगी। और एक सूरत यह है कि बगैर किसी के अमल के वो दोनों चीजें आपस में मिल गईं, मसलन زید کے درہم نیچے پڑے ہوئے تھے اور عمر کے درہم تھیلی کے اندر تھے۔ عمر نے اپنے درہموں کی تھیلی اٹھائی تو وہ تھیلی اچانک پھٹ گئی اور عمر کے درہم زید کے درہموں میں مل گئے۔ اب درہم تو ایک جیسے ہیں، اب پتہ ہی نہیں کہ کون سے درہم زید کا ہے اور کون سا عمر کا ہے۔ تو یہاں پر بھی دونوں کی شرکت آ گئی ان درہموں میں، تو یہ بھی شرکت املاک کی مثال ہے بھائی۔ تو کہتے ہیں اب اختلط مالہما، یا دونوں کا مال مل گیا، من غیر صنع احدہما، دونوں میں سے کسی ایک کے عمل کے بغیر، دونوں میں سے کسی کے عمل کے بغیر ہی دونوں کا مال آپس میں مل گیا، جیسے میں نے مثال ذکر کر دی درہموں کی تھیلی پھٹ گئی۔ او بخلتی ہی ما خلطیم نہ تمیز رسن، او بخلتی ہی ما، یا دونوں کے ملا دینے کی وجہ سے کہ دونوں نے خود ہی اپنے درہم آپس میں ملا دیے، یا دونوں نے خود ہی اپنی گندم آپس میں ملا دی بھائی۔ تو کہتے ہیں او بھی خلتی ہی ماں، یا ان دونوں کے خود ملا دینے کی وجہ سے، خلطن ایسا ملانا، یمنع التمییز رأسن، جو جدا کرنے کو منع کرتا ہے، رأسن قطعی طور پر، یعنی وہ دونوں کی چیزیں ایسی مل گئی ہیں کہ اب جدا کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ جیسے زید اور عمر کے گندم آپس میں مل گئی، کچھ گندم زید کی تھی کچھ عمر کی تھی، اب دونوں کو جدا کرنا ممکن ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے۔ او الا بحرج، یا جدا کرنا ممکن تو ہے لیکن حرج کے ساتھ، یعنی بڑا مشکل کام ہے۔ جیسے مثلا زید کی گندم تھی اور عمر کی جو تھی، جو، اب گندم اور جو کے دانوں میں فرق ہے بھائی، وہ تو دیکھنے سے ہی پتا چل جاتا ہے۔ تو اب زید کی گندم اور عمر کی جو آپس میں مل گئی، اب ان دونوں کو جدا کرنا ممکن تو ہے لیکن بڑا مشکل کام ہے بھائی، ایک ایک دانے کو الگ کرنا پڑے گا۔ تو لہذا دو افراد کے مال کا اس طور پر مل جانا کہ ان کو جدا کرنا ممکن ہی نہ رہے، یا جدا کرنا ممکن تو ہے لیکن بہت مشکل کام ہے، تو دونوں اس مال میں شریک ہیں، تو یہ شرکت املاک ہے بھائی۔ پھر ترجمہ دیکھ لیجئے، کہتے ہیں اب اختلط مالہما من غیر صنع احدہما، یا دونوں کا مال مل گیا دونوں میں سے کسی ایک کے عمل کے بغیر ہی، او بخلطہما خلطا یمنع التمییز رأسا، یا دونوں کے ایسا ملا دینے کی وجہ سے کہ جدا کرنا ممکن ہی نہیں رہا قطعی طور پر، او الا بحرج، یا ممکن تو ہے لیکن حرج کے ساتھ ہے۔ وَيَجُوزُ بَيْعُ أَحَدِهِمَا نَصِيبَهُ مِنْ شَرِيكِهِ فِي جَمِيعِ الصُّوَرِ، بھائی اوپر متن کے اندر آیا تھا شرکت املاک کی مثال ذکر کی، کہ اگر دو آدمی کسی معین چیز کے وارث بن جائیں تو یہ بھی شرکت املاک ہے، یا دو آدمی مل کر ایک چیز کو خرید لیں تو یہ بھی شرکت املاک ہے، اور شرکت املاک کے اندر ایک شریک دوسرے شریک کے حصے میں کوئی تصرف نہیں کر سکتا سوائے اس کی اجازت کے، اس سے اجازت لے لے پھر اس کے حصے میں تصرف کر سکتا ہے، اور ہر شریک دوسرے کے حصے میں اجنبی کی طرح ہے، اور اپنے حصے میں اب تصرف وہ کر سکتا ہے۔ تو صاحب ہدایہ آپ کو تفصیل بتلانے لگے ہیں کہ مثلا شرکت املاک کے اندر ایک شریک اپنے حصے میں تصرف کرتا ہے اور اسی دوسرے شریک کے ہاتھ اسے بیچنا چاہتا ہے، زید اور عمر نے مل کر گندم خریدی ہے، 50,000 زید نے ملائے، 50,000 عمر نے ملائے، دونوں نے مل کر 100 من گندم خرید لی، اب اس 100 میں سے 50 من زید کے ہیں اور 50 من عمر کے ہیں، لیکن دونوں کے دانے ملے ہوئے ہیں، ہر ہر دانے میں زید کی بھی شرکت ہے اور عمر کی بھی شرکت ہے، اب زید اپنے حصے کی گندم وہ بھی اپنے شریک یعنی عمر کو بیچنا چاہتا ہے، تو یاد رکھو اپنے شریک کے ہاتھ بیچنا ہر حال میں جائز ہے، اپنے شریک کے ہاتھ بیچنا ہر حال میں جائز ہے، لیکن اگر زید اپنا حصہ کسی تیسرے آدمی کے ہاتھ فروخت کرنا چاہتا ہے یعنی کسی غیر شریک کے ہاتھ بیچنا چاہتا ہے، تو پھر بتلائیں گے صاحب ہدایہ کہ یہاں دو صورتیں بنتی ہیں، ایک صورت کے اندر زید اپنا حصہ تیسرے آدمی یعنی خالد کو بیچنا چاہتا ہے، تو زید کو اپنے شریک یعنی عمر سے اجازت کی کوئی ضرورت نہیں، और बाद सूरतों के अंदर जैद को अमर से भी इजाजत लेना पड़ेगी। तवज्जो है, जैद और अमर ने मिलकर गंदुम खरीदी है तो इस गंदुम के अंदर जैद भी शरीक है और अमर भी शरीक है। अब जैद अपना हिस्सा खालिद को बेचना चाहता है तो याद रखो साहिब हिदाया बतलाएंगे शिरकत अमला के अंदर बास सूरतों के अंदर शरीक अपना हिस्सा तीसरे आदमी को बेच सकता है अपने शरीक की इजाजत के बगैर ही, यानी जैद अमर की इजाजत के बगैर ही अपना हिस्सा खालिद को बेच सकता है। और बास सूरतों के अंदर जैद को अमर से इजाजत लेना पड़ेगी, अपने शरीक से इजाजत लेना पड़ेगी, फिर वो अपना हिस्सा खालिद को बेच सकता है, वैसे नहीं बेच सकता। तवज्जो है, तो उसकी तफसील बतलाएंगे साहिबे हिदाया कि अगर ये जो शिरकत अमलाक है ये दोनों ने पैसे मिलाकर कोई चीज खरीदी है तो उस चीज के हर हर जुज में दोनों शरीक हैं। जैसे जैद और अमर ने पैसे मिलाकर गंदुम खरीदी तो इस गंदुम के हर हर दाने में जैद और अमर शरीक हैं। गंदुम के किसी एक दाने को भी पकड़कर जैद ये नहीं कह सकता कि ये सिर्फ मेरा है, नहीं भाई, हर हर दाने में जैद का भी हिस्सा और अमर का भी हिस्सा। लिहाजा इसके अंदर जैद अगर अपना हिस्सा खालिद के हाथ बेचना चाहता है तो जैद को अमर की इजाजत की जरूरत नहीं, जैद अमर से इजाजत लिए बगैर ही अपना हिस्सा खालिद के हाथ यानी एक गैर शरीक के हाथ बेच सकता है। लेकिन वो सूरत जिसके अंदर जैद और अमर का माल आपस में मिल गया, जैद की गंदुम अलग थी, अमर की गंदुम अलग थी, फिर दोनों ने उसको आपस में मिला लिया, दोनों ने खुद मिलाया है या वैसे ही गंदुम आपस में मिल गई, दोनों की गंदुम अलग पड़ी हुई थी और किसी शख्स ने बेख्याली में दोनों को मिला दिया, यानी इन दोनों का उसके मिलाने में दखल नहीं। इस सूरत के अंदर भी जैद और अमर दोनों इस गंदुम में शरीक हो गए, लेकिन इस सूरत में फर्क है, जैद के दाने अलग थे अमर के दाने अलग थे, लिहाजा कोई एक दाना भी ऐसा नहीं है जिसमें जैद और अमर दोनों की शिरकत हो, बल्कि या तो जैद उसका मालिक है या अमर उसका मालिक है, अगरचे अब पता नहीं चल सकता, लेकिन हर हर दाने में दोनों की शिरकत नहीं है, कुछ दाने वो सिर्फ जैद के हैं और कुछ दाने सिर्फ अमर के हैं। तो अब जैद अगर अपना हिस्सा किसी तीसरे आदमी के हाथ बेचना चाहता है जी। तो जैद के लिए मुमकिन ही नहीं है अपने दाने तीसरे आदमी के हाथ बेच दे, जैद जब भी अपना हिस्सा अलग करेगा तो उसके अंदर कुछ दाने जैद के होंगे और कुछ दाने अमर के होंगे, लिहाजा इसलिए यहां पर जैद को अमर से भी इजाजत लेना पड़ेगी कि मैं अपना हिस्सा खालिद के हाथ बेचना चाहता हूं, अगर अमर इजाजत दे देता है फिर जैद बेच सकता है, वरना खालिद के हाथ वो नहीं बेच सकता। फर्क समझ में आया कि एक सूरत में जब दोनों ने मिलकर गंदुम खरीदी थी तो हर हर दाने में दोनों शरीक थे, तो वहां पर जब दोनों गंदुम को तकसीम भी करेंगे, कुछ आधी गंदुम अगर जैद ले लेता है और आधी गंदुम अमर ले लेता है तो यूं समझेंगे दोनों ने अपना अपना हिस्सा अलग कर लिया है, लिहाजा जैद अपना हिस्सा तीसरे आदमी के हाथ भी बेच सकता है और जैद आधी गंदुम अलग करके उसे देगा तो यूं ही समझा जाएगा जैद अपना हिस्सा अलग करके उसे दे रहा है। लेकिन वो सूरत जिसमें दोनों के माल मिल गए या दोनों ने खुद आपस में मिला दिए उसमें तो हर हर दाने में दोनों की शिरकत नहीं है, तो वहां जब भी एक साथी दूसरे के हवाले आधी गंदुम करेगा तो दूसरे शरीक के दाने भी यकीनन उसके अंदर आएंगे भाई, लिहाजा वहां फिर अपने शरीक से इजाजत लेना जरूरी है। सूरत समझ में आ गई। तो कहते हैं वयजूज़ु बैउ अहदिहिमा नसीबहु, और दोनों में से हर एक के लिए बेचना जायज है नसीबहु अपने हिस्से को, मीन शरीक ही अपने शरीक के हाथ। दोनों सूरतें जैद और अमर ने मिलकर गंदुम खरीदी है और जैद अब अपना हिस्सा अपने ही शरीक यानी अमर को बेचना चाहता है, या दोनों ने गंदुम के दाने आपस में मिला दिए, जैद की गंदुम अलग थी अमर की अलग लेकिन दोनों ने मिला दिए, अब जैद अपना हिस्सा अमर के हाथ बेचना चाहता है, तो चाहे दाने मिलाने वाली सूरत हो चाहे मिलकर खरीदने वाली सूरत हो, दोनों सूरतों में एक शरीक अपना हिस्सा दूसरे शरीक के हाथ बेच सकता है, उसमें कोई ममानअत नहीं है भाई। तो कहते हैं वयजूजु बैउ अहदिहिमा नसीबहु, और दोनों में से हर एक के लिए जायज है बेचना अपने हिस्से को, मिन शरीक ही अपने शरीक के हाथ, फी जमी सूअरी तमाम सूरतों में, व मिन गैर शरीक ही, और अगर ये कोई एक अपना हिस्सा बेचता है गैर शरीक के हाथ। शरीक कौन कौन है? जैद और आमर। और जैद अपना हिस्सा किसको बेचना चाहता है? खालिद के हाथ बेचना चाहता है, और खालिद तो इनके साथ शरीक नहीं, तो जैद अपना हिस्सा खालिद के हाथ बेचना चाहता है जो गैर शरीक है। तो खल्त और इख्तिलात के अलावा, खल्त और इख्तिलात के अलावा बाकी सूरतों में जैद अपना हिस्सा खालिद को बेच सकता है, उसे आमर से इजाजत लेने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन खल्त और इख्तिलात की सूरत में जब दोनों ने दाने मिलाए हैं या माल आपस में मिलाया है, तो वहां पर जैद खालिद के हाथ अपना हिस्सा बेचना चाहता है तो उसे अमर से भी इजाजत लेना पड़ेगी, क्योंकि जैद के लिए मुमकिन ही नहीं है अपना हिस्सा अलग कर ले, उसमें जरूर अमर का भी माल आएगा भाई जी। तो कहते हैं वह मिन गैरी शरीक ही बिगैरी इज़्नि ही, और गैर शरीक के हाथ भी हर एक अपना हिस्सा बेच सकता है बिगैरी इज़्नि ही अपने शरीक की इजाजत के बगैर ही, इल्ला फी सूरतिल खल्ती वल इख्तिलाती, मगर वो सूरत की जिसके अंदर दोनों ने अपना माल मिलाया है या वो माल खुद मिल गया है, इस सूरत में दूसरे की इजाजत के बगैर नहीं बेच सकता। फइन्नहु ला यजूज़ु, उसके अंदर जायज नहीं है कि गैर शरीक के हाथ बेच दे, इल्ला बिइज़्निही, मगर अपने शरीक की इजाजत से। वक़द बय्यन्नल फर्क फी किफायतिल मुंतही, और तहकीक हमने फर्क बयान किया है किफायतुल मुंतही में, साहिब हिदायत फरमा रहे हमने इन दोनों में फर्क बयान किया है किफायतुल मुंतही में, और मैंने फर्क बयान कर दिया कि जब दोनों मिलकर गंदुम खरीदते हैं या दोनों हिबा कबूल करते हैं या दोनों वारिस बनते हैं एक चीज के, तो हर हर जुज में शरीक होते हैं, और जब दोनों का माल अलग अलग था और उसको दोनों आपस में मिला देते हैं तो इसके अंदर हर हर दाने में दोनों या हर हर माल के हिस्से में दोनों शरीक नहीं है, बल्कि हर एक की चीज अलग है, अगरचे दोनों जुदा नहीं कर सकते उसको, लेकिन मिल्कियत अलग अलग ही है उस माल के अंदर दोनों की। ये तो था शिरकत अमलाक, अब शिरकत उकूद को बयान करने लगे हैं जिसके लिए ये बाब जिक्र कर रहे हैं साहिब हिदाया। कहते हैं वह जरबुस्सानी, और दूसरी किस्म जो है शिरकतुल उकूद, वो शिरकत उकूद है। वह रुकनुहल ईजाब उल कबूल, और शिरकत उकूद का रुकन ईजाब और कबूल है। भाई आप जानते हैं दो आदमियों के दरमियान जो अकद होता है वो ईजाब और कबूल पर मुश्तमिल होता है, तो शिरकत उकूद के अंदर भी दो आदमी मिलकर कारोबार करना चाहते हैं तो आपस में अकद करेंगे, और अकद ईजाब और कबूल का नाम है, तो वही जिक्र कर रहे हैं। कहते हैं वह रुकनुहल ईजाब उल कबूल, और शिरकत उकूद का रुकन जो है वो ईजाब और कबूल है। अब वो ईजाब और कबूल कैसे होगा वो बयान कर रहे हैं। कहते हैं वह हुआ अय्यकूला अहदुहुमा, और वो ये कि इन दोनों में से एक कहता है शारक तु कफी कजा व कजा, कि मैं तेरे साथ शरीक हो गया इस चीज में, यानी तिजारत में, फला फला तिजारत में, यानी मिलकर हम कपड़े की तिजारत करेंगे या फला फला तिजारत करेंगे, तो उनमें से एक कहता है शारक तू कफी कजा व कजा, कि मैं तेरे साथ शरीक हो गया इस चीज में, यानी इस तिजारत में। व यकूल अल आखरू, और दूसरा कहता है कबील तो, कि मैंने कबूल कर लिया, तो ये ईजाब और कबूल हो गया। वह शर्त हूं, और इस अकद की शर्त यह है कि अय्यकूना तसर्रुफुल माकूद अलैहि अक्द शिरकति काबिलन लिल वकालती। भाई इसके लिए शर्त यह है कि वो तसर्रुफ जिस पर अकद किया जा रहा है, वो तसर्रुफ जिस पर अकद किया जा रहा है, मसलन तिजारत वगैरह है, वो काबिले वकालत होना चाहिए, उसमें एक आदमी दूसरे को वकील बना सके, क्योंकि वकालत जरूरी है फिर ही शिरकत आएगी। मसलन आप एक शख्स के साथ अकदे शिरकत कर लेते हैं कि हम दोनों तिजारत करते हैं और जो भी नफा कमाएंगे वो आधा आधा तकसीम करेंगे, तो आप अलग काम कर रहे हैं, आपका साथी अलग काम कर रहा है, लेकिन नफे में एक दूसरे के साथ शरीक हैं, तो ये तभी हो सकता है जब आप जो भी अकद करें आप वो अकद अपने लिए भी कर रहे हों और दूसरे के लिए बतौरे वकील के कर रहे हों। तो अपने लिए आप यह अकद कर रहे हैं इस एतबार से आप हुए असील, और दूसरे शरीक के लिए भी यह अकद कर रहे हैं तो इस एतबार से आप उसके हुए वकील। भाई तो आप जो भी बेउशीरा करेंगे आप उसमें असील भी हैं और अपने शरीक के वकील भी हैं। तो इस सूरत में अब जब फायदा और नफा हासिल होगा तो इसमें दोनों का हिस्सा होगा, क्योंकि यह अकद आपने सिर्फ अपने लिए नहीं किया बल्कि अपने साथी के लिए भी बतौर वकील के किया है। तो मालूम हुआ नफे के अंदर शिरकत तभी हो सकती है जब उस तसर्रुफ के अंदर वकालत जायज हो। अगर वकालत जायज नहीं तो फिर शिरकत भी नहीं हो सकती। एक आदमी आपसे कहता है कि तुम जो शिकार करके लाओगे हम उसमें दोनों शरीक होंगे, और मैं भी जो शिकार करके लाऊंगा उसमें हम दोनों शरीक होंगे, कहते हैं नहीं ये शिरकत जायज नहीं, क्योंकि मुबाह चीजों के जमा करने के अंदर वकालत जायज नहीं है। जो भी मुबाह चीज को जमा कर लेगा और उसको महफूज कर लेगा वो उसका मालिक बन जाएगा। जैसे जंगल से लकड़ियां लाना या जंगल से घास लाना या इसी तरह जंगल से शिकार पकड़ के लाना, तो ये सब चीजें मुबाह हैं। जो भी घास लाएगा या लकड़ी लाएगा या शिकार को पकड़ेगा वो उसका मालिक हो जाएगा। तो मुबाह चीजों के अंदर तौकील जायज नहीं, दूसरे को वकील बनाना जायज नहीं, लिहाजा इनके अंदर अक़्द शिरकत जायज नहीं। तो लिहाजा जिस तसर्रुफ पर ये दोनों आपस में अक़्द कर रहे हैं वो तसर्रुफ ऐसा हो जिसमें दूसरे को वकील बनाया जा सके। अगर वकील नहीं बना सकते तो फिर उसमें शिरकत भी सही नहीं है भाई। तो कहते हैं वह शर्त हो, और इस आकद की शर्त यह है अयकूना तसरुफुल माकूदु अलैही, कि वो तसरुफ जिस पर आकद किया गया है आकद शिरकती। कौन सा आकद? शिरकत वाला आकद। भाई देखिए आकद शिरकती यह मफूल मुतलक है अल माकूदु अलैह के लिए, और मफूल मुतलक का अलग तर्जमा नहीं करते, उसको माकबल के साथ ही तर्जमे में मिला देते हैं। अब हम इसको मिला देंगे। कहते हैं वह शर्त हो, और इस अकद की शर्त यह है अयकून तसरुफुल माकूदु अलैही अकद शिरकती, कि वो तसरुफ जिस पर शिरकत का अकद किया गया है काबिलन लिल वकालती, वो वकालत के काबिल होना चाहिए, यानी वो वकालत को कबूल करता हो भाई, वहां वकील बनाया जा सके। तो इसके जरिए एहतराज किया किससे? ये शिकार खेलने से और जंगल से लकड़ियां लाने से और जंगल से घास लाने से, इनमें वकील नहीं बनाया जा सकता दूसरे को, तो इसके अंदर शिरकत भी जायज नहीं है। तो कहते हैं वह शर्त हो, और इस अकद की शर्त यह है अयकून तसरुफुल माकूद अलैही अकद शिरकती, कि वो तसरुफ जिस पर शिरकत का अकद किया गया है काबिलन लिल वकालती, वो वकालत के काबिल होना चाहिए, यानी वो वकालत को कबूल करता हो भाई। लियकून मायुस्तफाद बित तसरुफी, ताकि वो नफा जो हासिल हो बित तसरुफी तसरुफ की वजह से मुश्तरकम बैनहुमा, वो दोनों के दरमियान मुश्तरक हो। तवज्जो है, नफे के अंदर शिरकत तब आएगी जब उसमें दूसरा वकील तो बन सके जी। तो कहते हैं लियकूना मायुस्तफादू, मा से मुराद है नफा, लियकूना मायुस्तफादू, ताकि वो नफा जो हासिल हो भी तसरुफी तसरुफ की वजह से मुश्तरकम बैनहुमा, वो दोनों शरीकों के दरमियान मुश्तरक हो जाए। फयतहक्कु हुक्मुहु, तो इस सूरत में अक़्द शिरकत का हुक्म साबित होगा। अल मतलूबु मिनहु, वो हुक्म जो इस शिरकत से मतलूब है भाई। अक़्द शिरकत से क्या मतलूब है? नफे के अंदर शिरकत। दो आदमी आपस में आपदे शिरकत करते हैं, उसका मकसद क्या है? ताकि एक साथी जो नफा कमाए दूसरा भी उसमें शरीक हो जाए। तो यह माना है फयतहक्कु हुक्मुहुल मतलूब मिनहु, तो इस आकदे शिरकत का वो हुक्म पाया जाएगा जो इस आकद के जरिए मतलूब है, यानी नफे के अंदर शिरकत भाई। वकालत होगी तो नफे में शिरकत भी होगी, अगर उसमें दूसरा वकील ही नहीं बन सकता तो वहां नफे में शिरकत भी नहीं हो सकती भाई। आगे देखिए सुम्मा हिया अरबातु औजुहिन, फिर ये शिरकत उकूद जो है ये चार किस्म पर है, मुफावजतुन व इनानुन व शिरकतु सनाई व शिरकतुल वुजूह भाई। ये चार किस्म पर है, एक शिरकत है मुफावजा, एक शिरकत है इनान, एक शिरकतु सनाए सनाए कारीगरी, शिरकतु सनाए और एक है शिरकत वजूह भाई। हर एक की तफसील आगे साहिब हिदाया बयान करेंगे भाई। तो कहते हैं सुम्महिया अरबातु औजुहिन, फिर ये शिरकत उकूद चार किस्म पर है, मुफावजतुं व ऐनानुं व शिरकतु सनाई व शिरकतुल वुजूह। एक मुफावजा है, एक ऐनान है, एक शिरकत सनाई है और एक शिरकत वुजूह है। फअम्मा शिरकतुल मुफावजति फहिया अन यश्तरिका रजुलानी फयतसावयानी फी मालिहिमा व तसर्रुफिहिमा व दीनिहिमा। भाई मुफावजा, मुफावजा का माना है बराबरी के, और यह शिरकत मुफावजा के अंदर भी दोनों शरीकों में बराबरी होनी चाहिए। भाई तो कहते हैं फअम्मा शिरकतुल मुफावजाती, तो शिरकत मुफावजा जो है फहिया अय्यश तरीकर रजुलानी, वो ये कि दो आदमी शरीक हो जाएं, फयतसा वयानी फी मालिहिमा, तो ये दोनों बराबर होंगे अपने माल में, व तसरुफ हिमा और अपने तसरुफ में, व दीन हिमा और अपने दीन में। भाई शिरकत मुफावजा के अंदर जरूरी है कि दोनों शरीकों का माल भी बराबर हो, उनका तसर्रुफ भी बराबर हो और उनका दीन भी बराबर हो जी। दोनों का दीन भी बराबर हो, माल दोनों का बराबर होना चाहिए, यानी वो माल मुराद है जिसमें शिरकत हो सके, और शिरकत जो है वो सिर्फ दिरहम और दनानीर में है, दिरहम और दनानीर में हो सकती है, या इसी तरह जो राइज करेंसी है, फुलूस नाफिका जो राइज पैसे हैं, तो दिरहम दीनार और राइज करेंसी के अंदर शिरकत हो सकती है, तो ये दोनों के ये माल बराबर होने चाहिए। तो शिरकत मुफावजा इसके अंदर जरूरी है, एक आदमी के पास 20 दिरहम है तो दूसरे के पास भी 20 दिरहम होने चाहिए, माल के अंदर दोनों बराबर हों। बाकी एक के पास जमीन ज्यादा है, एक के पास जमीन कुछ कम है, या एक के पास घर का सामान ज्यादा है, दूसरे के पास घर का सामान कुछ कम है, या एक के पास बकरियां ज्यादा हैं, दूसरे के पास बकरियां कुछ कम हैं, तो ये सामान वगैरह को या जमीन और जायदाद को नहीं देखा जाएगा, सिर्फ ये दिरहम और दीनार और करेंसी को देखा जाएगा। दिरहम और दीनार के अंदर दोनों बराबर होने चाहिए, दोनों का माल बराबर होना चाहिए, क्योंकि मुफावजा, मुफावजा का माना है बराबर, भाई दोनों बाहम एक दूसरे के बराबर हों, तो लिहाजा दोनों माल के एतबार से भी बराबर हों और नीस तसरुफ के एतबार से भी बराबर हों। जिन तसरुफात का एक को हक है, दूसरे को भी उन तसरुफात का हक हो। लिहाजा ये शिरकत है मुफावजा, ये बालिग और नाबालिग के दरमियान नहीं हो सकती जी। दो शरीकों में से एक बालिग है और दूसरा नाबालिग है, इनके दरमियान शिरकत मुफावजा नहीं हो सकती। वजह यह कि बालिग को तो हर किस्म के तसरुफात का हक हासिल है, और जो नाबालिग है, जो बच्चा है, उसको तो वली की इजाजत के बगैर तसरुफात का हक नहीं है। भाई इसी तरह आजाद और गुलाम के दरमियान भी याकद मुफावजा नहीं हो सकता, क्योंकि आजाद जो है वह हर किस्म के तसरुफात का मालिक होता है, जबकि गुलाम तो आका की इजाजत के बगैर तसरुफात का मालिक नहीं है। तो लिहाजा अक्द मुफावजा के अंदर तसरुफात में बराबरी जरूरी है जी। और नीज दीन के अंदर भी बराबरी जरूरी है, यानी एक मुसलमान अक्द मुफावजा करना चाहता है जिम्मी के साथ, यह जायज नहीं। वजह यह कि जिम्मी जो है उसके लिए तो शराब और खिंजीर की बैशिरा जायज है, लेकिन मुसलमान के लिए तो यह बैशिरा जायज नहीं। तो देखो जिम्मी जो है उसको बाज वो तसरुफ हासिल हैं जो मुसलमान को हासिल नहीं है, तो लिहाजा इन दोनों के दरमियान भी अकदे मुफावजा दुरुस्त है। हां तो जिम्मी आपस में अकदे मुफावजा करते हैं, एक जिम्मी जो है वो ईसाई है और दूसरा यहूदी है या मजूसी है, तो इनके दरमियान जो है अक्द मुफावजा जायज है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अलकुफ्रु मिल्लतुं वाहिदा, कि कुफर सारा का सारा एक ही दीन है। तवज्जो है, तो लिहाजा वो दीन के एतबार से बराबर हैं, चाहे एक ईसाई हो या एक यहूदी हो या मजूसी हो। भाई तो कहते हैं फअम्मा शिरकतुल मुफावजाती फहिया अय्यश तरीकर रजुलानी, तो शिरकत मुफावजा यह है कि दो आदमी शरीक हो जाएं, फयतसावयानी फी मालिहिमा, तो ये दोनों बराबर हों अपने माल में, व तसर्रुफिहिमा और अपने तसर्रुफ में, व दीनिहिमा और अपने दीन में, लिअन्नहा शिरकतुन आम्मतुन फी जमीई तिजाराती, इसलिए क्योंकि आम शिरकत है तमाम तिजारतों में। भाई याद रखो ये अक़्दे मुफावजा के अंदर दोनों मिलकर तिजारत के काम करेंगे, लेकिन इसमें यह जरूरी नहीं है कि मिलकर कपड़े का काम करेंगे, नहीं, एक शरीक अपने तौर पर जो भी काम करना चाहता है करेगा, हर बेउशिरा के अंदर जो नफा होगा दूसरा भी उसमें शरीक होगा। तो यह तमाम तिजारतों को शामिल है, जिस किस्म की तिजारत भी दोनों करना चाहें, हर एक की मर्जी है भाई, तवज्जो है। और यह भी याद रखना, यह जो अक़्दे मुफावजा है इसके अंदर दोनों शरीक एक दूसरे के वकील भी हैं और एक दूसरे के कफील भी हैं। कफील यानी जामिन, जामिन कफालत, उर्दू में हम उसे जमानत कहते हैं। आप एक आदमी के पास गए कि मुझे कुछ कर्ज चाहिए, तो उसने कहा कि भाई किसी जामिन को लेकर आओ, कोई जमानत दे कि आप मेरा कर्ज वापस करेंगे, तो आप अजैद को ले गए कि मेरी जमानत देगा। तो हम इसको उर्दू में क्या कहते हैं, जमानत, और अरबी में क्या कहते हैं, कफालत। तो ये जो अक़्द मुफावजा है इसमें दोनों शरीक जो भी अक़्द करेंगे उसमें दोनों एक दूसरे के वकील हैं और दोनों एक दूसरे के कफील भी हैं, यानी जामिन भी हैं। जामिन होने का फायदा यह है कि मुतालबा दोनों से हो सकता है। मसलन अभी जैसे मैंने मिसाल जिक्र की, आप एक आदमी के पास कर्ज लेने गए, उसने कहा किसी जामीन को लेकर आओ, कोई आदमी आपकी जमानत दे कि आप मेरा कर्ज वापस करेंगे। आप जैद को ले गए, जैद ने जाकर जमानत दी कि यह आदमी आपका कर्ज वापस कर देगा, अगर इसने अदा ना किया तो मुझसे ले लेना जी। तो अब वो जो कर्ज खा है बाद में आपसे भी मुतालबा कर सकता है क्योंकि आप ही ने तो कर्ज लिया था, और वो जैद से भी मुतालबा कर सकता है क्योंकि जैद ने जमानत दी थी जी। तवज्जो है। तो मालूम हुआ माल का मुतालबा असील से भी हो सकता है और कफील से भी हो सकता है। तो अक़्द मुफावजा के अंदर दोनों साथी एक दूसरे के वकील भी हैं। मसलन आपने अपने साथी के साथ अक़्द मुफावजा कर लिया, आप जो भी अक़्द कर रहे हैं यह अक़्द सिर्फ आपके लिए नहीं है बल्कि आपके लिए भी है और दूसरे साथी के लिए भी है, आप उसकी तरफ से वकील बनकर यह अक़्द कर रहे हैं जी। तवज्जो है। तो हर अक़्द में आप असील भी हैं क्योंकि अपने लिए भी अक़्द कर रहे हैं और वकील भी हैं क्योंकि आपके साथी के लिए भी है यह अक़्द भाई, और हर अक़्द के अंदर आपका साथी आपका जामिन है, लिहाजा वो शख्स जिसके साथ आपने बैअ की है तो वो समन का मुतालबा आपसे भी कर सकता है और आपके शरीक से भी आकर कर सकता है भाई। तो कहते हैं दोनों बराबर होंगे माल में, तसारुफ में और दीन में, लिअन्नहा शिरकतुन आम्मतुन फी जमीई तिजाराती, इसलिए क्योंकि यह अक़्द मुफावजा जो है यह शिरकत आम्मा है तमाम तिजारतों में, यह हर तिजारत को शामिल है। मैंने बताया इसमें कोई पाबंदी नहीं कि आप फलां काम करेंगे और फलां नहीं करेंगे। युफव्विज़ु कुल्लु वाहिदिन मिन्हुमा, इन दोनों में से हर एक सुपुर्द करता है अम्र शिरकति शिरकत के मामले को, इला साहिब ही अपने साथी के, अलल इतलाकी बगैर किसी कैद के, दोनों में से हर एक शिरकत के मामले को अपने साथी के हवाले करता है कि अलल इतलाक तुम जो भी काम करना चाहो तुम्हें काम करने की इजाजत है, तुम पर कोई पाबंदी नहीं है, हां अलबत्ता नफे में मेरा भी हिस्सा होगा और दूसरे को भी इजाजत होती है, उस पर भी कोई पाबंदी नहीं, वो जो भी काम करना चाहे वो कर सकता है, अलबत्ता नफे के अंदर शरीक का भी हिस्सा होगा। यह माना है युफव्विज़ु कुल्लु वाहिदिन मिन्हुमा अम्र शिरकती, कि इसके अंदर दोनों में से हर एक जो है शिरकत के मामले को सुपुर्द करता है, इला साहिबी ही अपने साथी के, अलल इतलाकी, अलल इतलाक यानी बगैर किसी कैद के, इस हिया मिनल मुसावाती, इसलिए कि मुफावजा जो है मुसावात से है माना के एतबार से, मुफावजा का माना है बाहम एक दूसरे के बराबर होना। काला काइलुहुम, अरबों में से एक कहने वाला कहता है, यह एक शायर का शेर है और इसके अंदर बतलाएंगे कि यह मुफावजा जो है यह बराबरी के माना में है भाई। तो कहते हैं काला काइलुहुम, अरबों में से कहने वाला कहता है, ला यसलुहुन्ना सुफाउजा ला साराता लहुम वला साराता इदा जुहालुहुम सादू ला यसलुहुन नासु, सलुहा यसलुहु का माना है ठीक होना, किसी का ठीक होना, दुरुस्त होना, सही होना। ला यसलुहुन नासु, लोग ठीक नहीं हो सकते, यानी उनके मामलात ठीक नहीं हो सकते। ला यस्लुहुन्नासु, लोगों के मामलात ठीक नहीं हो सकते। फौजा, इस हाल में कि वो बराबर हों। देखो ये है फौजा, इसी से मुफावजा है
जी।
और मादा क्या है? फा, वौ और ज़ाद। तो फौजा का माना भी बराबर होना, और मुफावजा में भी बाहम एक दूसरे की बराबरी होती है भाई। तवज्जो है, ला यस्लुहुन्नासु, लोगों के मामला ठीक नहीं हो सकते। फौजा, इस हाल में के सारे लोग बराबर हों। ला सराता लहुम, उनका कोई सरदार ना हो। सरात भाई सीन के साथ और आखिर में गोलता है। सरात ये जमा है सरियुन की, सरियुन सरदार को कहते हैं। ला यस्लुहुन्नासु, के लोगों के मामला ठीक नहीं हो सकते। फौजा, इस हाल में कि वो बराबर हों। ला सराता लहुम, उनका कोई सरदार ना हो। भाई शायर कहता है, शायर कहता है कि लोगों के मामला ठीक चल ही नहीं सकते जब तक उनमें कोई सरदार ना हो
जी।
कोई लोगों में सरदार चाहिए कि आपस में किसी मामले में झगड़ा आए या खराबी आए तो सरदार के पास मामले को ले जाकर उसकी इसलाह कर सके, फिर ही मामला ठीक चलेंगे। अगर सारे लोग आपस में बराबर हैं, इनमें कोई सरदार ना हो, तो फिर मामला ठीक नहीं चल सकते। फिर तो फितना और फसाद फैल जाएगा। हर शख्स कहेगा कि मैं सही हूं और कोई उनमें फैसला करने वाला नहीं होगा भाई। तो लोगों के मामलात बगैर सरदार के ठीक नहीं चल सकते। तो कहते हैं ला यस्लुहुन्नासु फौजा ला सराता लहुम, और लोगों के मामलात ठीक नहीं हो सकते इस हाल में कि वो बराबर हों, उनका कोई सरदार ना हो। वला सराता इदा जुहालुहुम सादु, वला सराता, और कोई सरदार नहीं है। ईसा जुहालुहुम साधु, जब इनके जाहिल इनके सरदार बन जाएं। जुहालुहुम साधु, जब इनके जाहिल इनके सरदार बन जाएं। अगर जाहिल इनके सरदार बन जाएं, फिर भी यूं समझो कोई सरदार नहीं है, फिर भी वहां फितना और फसाद ही बरपा होगा और उनके मामला ठीक नहीं हो सकते। तो कौमों की इसलाह के लिए और फितने और फसाद को दफा करने के लिए कौम में सरदार का होना जरूरी है भाई। फिर तर्जमा देख लीजिए, ला यस्लुहुन्नासु फौजा ला सराता लहुम, के लोगों के मामला ठीक नहीं हो सकते इस हाल में कि वो बराबर हों। ला सराता लहुम, उनका कोई सरदार ना हो। वला सराता इदा जुहालुहुम साधु, और कोई सरदार नहीं है जब वो जाहिलों को अपना सरदार बना लें। आगे देखिए भाई, अय मुतसावीना, भाई मेरी किताब में है मुतसावीना, ये वौ के बाद दो या हैं भाई, ये दो या नहीं होनी चाहिए वरना तो ये तस्निया बन जाता है। अय मुतसावीयैनि, हालांकि यहां तस्निया नहीं चाहिए, जमा चाहिए
जी।
क्या चाहिए
जी?
जमा चाहिए। और मुतसावीन भाई, इसकी जमा क्या है? मुतसावूना, इसकी जमा मुतसावूना है, और हालत नस्बी जरी में मुतसावीना है भाई। तो शेर के अंदर फौजा का लफ्ज आया था और फौजा के माने बराबरी के हैं भाई, और इसी से मुफावजा है भाई। और ये फौजा का लफ्ज हाल वाके हो रहा है और हाल मंसूब होता है, इसीलिए साहिब हिदाया इसकी तफसीर भी मंसूब लाए हैं भाई। अय मुतसावीना, तो यहां एक या होनी चाहिए। अय मुतसावीन, यानी कि लोग आपस में बराबर हों तो फिर लोगों के मामला ठीक नहीं चल सकते। फला बुद्ध मिन तहकीक मुसावात इब्तिदा व इंतहाअन, यहां से फिर अब मुफावजा की बात शुरू कर दी। दरमियान में सिर्फ वो शेर जिक्र किया और मुफावजा का माना बयान करने के लिए कि मुफावजा के माने बराबरी के हैं। तो साहिब हिदाया फरमा रहे हैं कि जब मुफावजा के माने बराबरी के हैं तो इब्तिदाअन भी बराबरी जरूरी और इंतहान भी बराबरी जरूरी, यानी जब आकद करें उस वक्त भी माल में भी बराबर हों, तसरुफ में भी बराबर हों और दीन के अंदर भी बराबर हों, और बाद में जब ये अकदे शिरकत चल रहा है तो उस वक्त भी माल में भी बराबरी जरूरी, तसरुफ में भी बराबरी जरूरी और दीन के अंदर भी बराबरी जरूरी है। अगर एक का भी माल बढ़ गया तो अकदे मुफावजा बातिल हो जाएगा, और याद रखो इस सूरत में फिर ये शिरकत ऐनान बन जाएगी। अगर एक का भी माल बढ़ गया तो यह अकदे मुफावजा बातिल, क्योंकि मुफावजा के अंदर बराबरी जरूरी है, जब बराबरी नहीं तो मुफावजा भी नहीं, फिर यह शिरकत ऐनान बन जाएगी। तो कहते हैं फला बुद्ध मिन तहकीक मुसावाती, लिहाजा बराबरी का पाया जाना जरूरी है। इब्तिदा अं व इंतहा, इब्तिदा के एतबार से भी और इंतहा के एतबार से भी, इब्तिदा के एतबार से भी बराबरी होनी चाहिए यानी जब अक्दे मुफावजा करें, और इंतहा के एतबार से भी बराबरी होनी चाहिए यानी बकाए अकद की हालत में भाई। तो कहते हैं लिहाजा बराबरी का होना जरूरी है इब्तिदा अं व इंतहा, इब्तिदा और इंतहा के एतबार से। वदालिका फिल माली, अब भाई ये बराबरी किस चीज में होगी? ऊपर मतन में बतलाया था माल में भी बराबरी होगी, तसरुफ में भी बराबरी होगी और दीन के अंदर भी बराबरी होगी। अब उसको बयान कर रहे हैं वजालिका फिल माली, और वह बराबरी जो है माल के अंदर होगी। वल मुराद बिही मा तसिहु शिरकतु फी, मैंने आपको बतलाया था कि शिरकत सिर्फ दिरहम और दीनार और करेंसी में होगी, बाकी अगर एक की जमीन ज्यादा है या एक के पास सामान ज्यादा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसमें तो अक़्द मुफावजा नहीं होता भाई। तवज्जो है, वही बयान कर रहे हैं वज़ालिका फिल माली, और वो बराबरी माल में होगी। वन मुराद बिही मा तसिहु शिरकतु फीही, और मुराद इससे वो माल है कि जिसके अंदर शिरकत सही हो यानी दिरहम और दीनार और राइज करेंसी है। वला युअतबरु तफाजुलु फी मा ला यसिहु शिरकतु फीही, वला युअतबरु तफाजुलु, और ज्यादती का एतबार नहीं है फी मा ला यसिहु शिरकतु फीही, जिसके अंदर शिरकत सही नहीं। एक के पास सामान ज्यादा है तो उस ज्यादती का कोई एतबार नहीं, या एक के पास जमीन ज्यादा है तो उस ज्यादती का कोई एतबार नहीं, क्योंकि सामान और जमीन के अंदर तो यहां शिरकत नहीं हो सकती भाई। तो कहते हैं वला युअतबरु तफाजुलु, और बाहम एक दूसरे पर ज्यादती मुअतबर नहीं है। फी मा ला यसिहु शिरकतु फीही, उस माल के अंदर जिसके अंदर शिरकत सही नहीं है। वकदा फी तसर्रुफी, और इसी तरह बराबरी जरूरी है फी तसर्रुफी, तसर्रुफ के अंदर भी। लिअन्नहु लौ मलका अहदुहुमा तसर्रुफन, इसलिए क्योंकि अगर दोनों में से एक मालिक हुआ तसर्रुफन ऐसे तसर्रुफ का, ला यमलिकुल आखरु, कि दूसरा उस तसर्रुफ का मालिक नहीं है। लफात तसावी, फिर तो दोनों में बराबरी फौत हो गई, फिर तो दोनों में बराबरी खत्म हो गई। वह कजालिका फी दीनी, और इसी तरह दोनों के अंदर दीन में भी बराबरी जरूरी है। लिमा नुबय्यिनु इंशा अल्लाह ताला, उस वजह से जो इंशा अल्लाह ताला हम बयान करेंगे। दीन के अंदर भी बराबरी जरूरी है, उस वजह से जो हम बयान करेंगे। मैंने आपको वजह बतला दी, क्योंकि अगर दीन के अंदर बराबरी नहीं होगी तो काफिर जो है वो शराब और खिंजीर में तसर्रुफ कर सकता है, और मुसलमान तो उसमें तसर्रुफ नहीं कर सकता, तो बराबरी न रही भाई। तो कहते हैं वकदालिका फी दीन, और इसी तरह दीन के अंदर भी बराबरी जो है वो शर्त है। लिमान उबय्यिनु इंशा अल्लाह ताला, उस वजह से जिसे इंशाअल्लाह हम बयान करेंगे। वहां दही शिरकतु जाइजतुन इंदन इस्तेहसानन, और यह शिरकत हमारे नजदीक इस्तेहसानन जायज है। यहां से बतला रहे हैं कि ये जो शिरकत मुफावजा है ये इस्तेहसानन जायज है। कियास तो ये तकाजा करता है कि इसे जायज नहीं होना चाहिए। वजह ये है कि यहां पर दोनों शरीकों में से हर एक दूसरे का वकील भी है और कफील यानी जामिन भी है, और दोनों को इजाजत है हर तरह की तिजारत करने की। तो गोया ये मजहूल चीज पर वकालत और मजहूल चीज पर कफालत लाजिम आ रही है, और मजहूल चीज पर किसी को वकील बनाना या मजहूल चीज पर कफील बनना ये तो सही नहीं है भाई, ये तो जायज नहीं है। मैं आपसे कहता हूं कि आप मेरी तरफ से वकील हैं, तो आप कहेंगे भाई किस चीज में वकील हूं मुझे ये तो बतला दीजिए। तो देखो मजहूल चीज पर वकील बनाना सही नहीं, कम से कम जींस तो मालूम होनी चाहिए। मसलन मैं आपसे कहता हूं बाजार से मेरे लिए कुछ खरीद कर ले आओ, तो आप कहेंगे भाई मैं क्या ले आऊं आपके लिए खरीद कर, क्योंकि इसके अंदर तो सारी चीजें दाखिल हो जाती हैं भाई, मैंने तो कोई बयान नहीं किया कि क्या चीज लेकर आएंगे। तो यहां पर कम से कम जींस तो बयान होनी चाहिए। मसलन मैं आपसे कहता हूं मेरे लिए गाड़ी ले आओ, अब गाड़ी की बेशुमार किस्में हैं लेकिन बहरहाल कम से कम जींस का तो पता चल गया। या मैं आपसे कहता हूं मेरे लिए कपड़ा ले आओ, अब कपड़े बेशुमार किस्म के हैं लेकिन कम से कम जींस का तो पता चल गया। तो जिंस का ही पता ना हो तो वकील बनना या बनाना सही नहीं है, और इसी तरह माल का पता ही नहीं है तो जमानत भी सही नहीं। आप एक शख्स के लिए जमानत देते हैं तो कम से कम पता तो होना चाहिए किस माल की आप जमानत दे रहे हैं। तो मजहूल चीज पर कफालत भी यानी जमानत भी सही नहीं और मजहूल चीज की वकालत भी सही नहीं। और यहां पर दोनों शरीक एक दूसरे के वकील भी हैं और कफील भी हैं और दोनों को हर तरह के तसरुफात की इजाजत है। तो गोया एक शख्स जो भी अकद करेगा दूसरे को पता ही नहीं, लेकिन ये उसकी तरफ से वकील भी है और दूसरा इसकी तरफ से कफील भी है, तो ये तो मजहूल चीज पर वकील और कफील होना लाजिम आ रहा है, और मजहूल चीज पर वकील होना या कफील होना तो जायज नहीं। लिहाजा कियास तकाजा करता है कि अकद मुफावजा जायज ही नहीं होना चाहिए, लेकिन इस्तेहसानन शिरकत मुफावजा को जायज करार दिया गया। और इस्तेहसान की क्या दलील है वो आगे साहिब हिदाया बयान फरमाएंगे। कहते हैं वहाद ही शिरकत जाइज़तुन इंदन इस्तेहसानन, और ये शिरकत मुफावजा हमारे नजदीक इस्तेहसानन जायज है। वफिल कियास ला यजूज़ और कियास में ये जायज नहीं। वह कौलु शाफिई रहिमहुल्लाहु ताला और यही कौल है इमाम शाफिई रहिमहुल्लाह का भी, यानी वो भी फरमाते हैं कि मुफावजा जायज नहीं। वकाल मालिक रहिमहुल्लाह और इमाम मालिक रहमहुल्लाह फरमाते हैं ला आरिफु मुफावजा तू कि मैं नहीं जानता कि मुफावजा क्या है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह से मुफावजा के बारे में पूछा गया तो फरमाने लगे मैं नहीं जानता मुफावजा क्या है। अब इसका क्या माना कि मैं नहीं जानता मुफावजा क्या है, तो बाज उलमा फरमाते हैं कि जब कोई आलिम किसी चीज के बारे में कहे कि मैं इस चीज को नहीं जानता तो दरअसल वो किनाया कर रहा होता है उस चीज के फासिद होने से। जब एक आलिम एक तसर्रुफ के बारे में कहे कि मैं नहीं जानता तो यह दरअसल किनाया होता है कि यह तसर्रुफ फासिद है, यह जायज नहीं है। तो यह बाज़ उलमा ने इमाम मालिक रहमतुल्लाह के कौल का माना बयान किया कि जो इमाम मालिक रहमतुल्लाह ने फरमाया मैं मुफावजा नहीं जानता, माना यह है कि अक़्द मुफावजा फासिद है, यह जायज नहीं है। लेकिन दीगर उलमा फरमाते हैं कि नहीं, किसी चीज के न जानने का एतराफ करना इसको उस चीज के फासिद होने का हुक्म करार नहीं दिया जा सकता। इमाम मालिक ये नहीं बयान फरमा रहे कि अक़्द मुफावजा फासिद है, बल्कि यहां सवाल करने वाले ने जिस अक़्द मुफावजा के बारे में पूछा इमाम मालिक रहमतुल्लाह फरमाने लगे ये जो मुफावजा तुम बयान कर रहे हो ये अक़्द मुफावजा तो मैं नहीं जानता। ये अक़्द मुफावजा जो तुम बयान कर रहे हो जिसमें दोनों शरीकों का माल बराबर होना चाहिए ये अक़्द मुफावजा तो मैं नहीं जानता। चुनांचे इसलिए बास की बार मालिकी फुकाहा से मुफावजा का जवाज मनकूल है, वो फरमाते हैं अक़्द मुफावजा जायज है, अलबत्ता उनके नजदीक इसमें माल की बराबरी शर्त नहीं है। इसमें दोनों शरीक एक दूसरे को तसरुफ का हक देते हैं कि चाहे मैं मौजूद हूं चाहे मैं मौजूद ना हूं तुम्हें तसरुफ का हक हासिल है भाई, और तुम्हारा कब्जा भी मेरे ही कब्जे की तरह शुमार होगा, अलबत्ता इसके अंदर माल की बराबरी जरूरी नहीं होती। तो मालूम हुआ इमाम मालिक रहमतुल्लाह के नजदीक भी मुफावजा जायज है, अलबत्ता उनके नजदीक इसमें माल की बराबरी की शर्त नहीं है भाई। तो कहते हैं वकाल मालिक रहिमहुल्लाह ताला ला आरिफु मल मुफावजा तू और इमाम मालिक रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि मैं नहीं जानता अक़्द मुफावजा क्या है। वजहुल कियास ही, अब कियास की वजह जिक्र कर रहे हैं, कियास तो तकाजा करता है कि अक़्द मुफावजा जायज नहीं क्योंकि इसमें मजहूल चीज पर वकालत और मजहूल चीज पर कफालत लाजिम आती है और ये दोनों जायज नहीं है। तो कहते हैं वजहुल कियास ही और कियास की वजह यह है कि अन्नहा तजम्मनतिल वकालत बि मजहूलिल जिंसी कि अक़्द मुफावजा मुतजम्मिन है मजहूल जिंस पर वकालत को। अक़्द मुफावजा मुतजम्मिन है मजहूल जिंस पर वकालत को, यानी दोनों एक दूसरे को वकील बना रहे हैं और जिंस मुतय्यन ही नहीं है कि किस चीज के खरीदने में वकील बना रहे हैं क्योंकि दोनों को हर तरह की तिजारत की इजाजत है भाई। तो तिजारत तो मुतय्यन ही नहीं, माल तो मुतय्यन ही नहीं, तो मजहूल जिंस पर दोनों एक दूसरे को वकील बना रहे हैं और यह जायज नहीं, और नीज इसी तरह मजहूल चीज पर दोनों एक दूसरे के जामिन बन रहे हैं और यह भी जायज नहीं। जो कहते हैं अन्नहा तजम्मनतिल वकालत बी मजहूलिल जिनसी वल कफालत बी मजहूलिन, इस वजह से कि यह शिरकत मुफावजा जो है यह मजहूलुल जिन्स पर वकालत को और मजहूल चीज पर कफालत को मुतजम्मिन है। वकुल्लु ज़ालिका बिन्फिरादिही फासिदुन, और इन दोनों में से हर एक जो है वो अलहदा तौर पर फासिद है। मजहूल जिन्स पर वकालत ये भी फासिद, और मजहूल चीज पर जमानत ये भी फासिद। तो जब दोनों में से हर एक अलहदा अलहदा फासिद है तो दोनों मिल जाएंगे तो भी फासिद ही रहेंगे, यानी वकालत और कफालत मजहूल चीज पर। तो कहते हैं वकुल्लु ज़ालिका बिन फिरादी ही फासिदुन, और ये मजहूल चीज पर वकालत और मजहूल चीज पर कफालत इन दोनों में से हर एक अलहदा तौर पर फासिद है तो मिलकर भी फासिद ही रहेंगे। वजहुल इस्तेहसान, इस्तेहसान की वजह जिक्र कर रहे हैं कि हमारे नजदीक इस्तेहसानन शिरकत मुफावजा जायज है। तो कहते हैं वजहुल इस्तेहसानी, इस्तेहसान की वजह जो है कौलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है, आपने फरमाया फाविजू फइन्नहु आज़मु लिलबरकति, फाविजू के तुम लोग अक़्दे मुफावजा किया करो, फइन्नहु आज़मु लिलबरकति क्योंकि ये ज्यादा बड़ा है बैतबार बरकत के, यानी इसमें ज्यादा बरकत है भाई। तो हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं फाविजू फइन्नहु आज़मु लिलबरकति कि तुम आकदे मुफावजा किया करो क्योंकि इसमें ज्यादा बरकत है। वकज़न्नासु युआमिलूनहा मिन गैरी नकीरिन, यहां से दूसरी दलील जिक्र कर रहे हैं कि लोगों का इस पर तआमुल है, मुसलमानों का इस पर तआमुल है, और तआमुल भी दलील है किसी चीज के जायज होने की। तो कहते हैं वकजन नासु युआमिलूनहा, और इसी तरह लोग जो हैं मुफावजा का बाहम मामला करते हैं, मिन गैरी नकीरिन बगैर किसी इनकार के, लोग आपस में मुफावजा का मामलात करते हैं और फुकहा इसका इनकार नहीं करते, इससे मना नहीं करते, मालूम हुआ ये जायज है। तो लोगों का अक़्द मुफावजा करना और फुकहा का उस पर इनकार और रद्द न करना ये उसके जायज होने की दलील है। तो कहते हैं वकज़न नासु युआमिलूनहा मिन गैरी नकीरिन, और इसी तरह लोग मुफावजा का बहम मामला करते हैं बगैर किसी इनकार के, यानी किसी फकीह की तरफ से इनकार नहीं किया जाता। वबिही युत्रकुल कियासु, और लोगों के इस तआमुल की वजह से कियास को छोड़ दिया जाता है। कियास तो तकाजा कर रहा था यह जायज नहीं होना चाहिए, लेकिन लोगों का तआमुल भी मौजूद है और नीस हदीस भी मौजूद है तो लिहाजा यह जायज होगा। तो कहते हैं वबिही युत्रकुल कियासु, और लोगों के तआमुल की वजह से कियास को तर्क कर दिया जाता है। वल जहालतु मुतहम्मलतुन तबअन, भाई कियास के मुताबिक अक़्द मुफावजा जायज नहीं क्योंकि इसमें जहालत है, मजहूल चीज पर कफालत और मजहूल चीज पर वकालत है और वो तो जायज नहीं। तो उसका भी जवाब दे रहे हैं कि यहां पर जो जहालत आ रही है वो ताबिया होकर आ रही है, असल मकसूद यहां पर नफे के अंदर शिरकत है। असल मकसूद क्या है? नफे के अंदर शिरकत है कि दो आदमी मिलकर कारोबार करें और नफे के अंदर दोनों शरीक हों। तो लिहाजा वो जहालत जो किसी के ताबिया होकर आ जाए वो जहालत काबिले बर्दाश्त होती है, वो जायज होती है। एक तो है एक चीज के अंदर कसदन जहालत आए, जैसे मैंने आपसे कहा आप मेरी तरफ से वकील हैं, आप देखो यहां पर मैंने कसदन किस चीज का वकील बना रहा हूं उसको मैंने जिक्र ही नहीं किया, तो ये कसदन जहालत है, और कसदन जहालत हो तो वकालत जायज नहीं होती। लेकिन यहां पर जो जहालत आ रही है वो अक़्दे मुफावजा के ताबे होकर आ रही है, लिहाजा वो काबिले बर्दाश्त है यानी जायज है भाई। तो कहते हैं वल जहालतु मुतहम्मलतुन तबअन, और जहालत जो है उसको बर्दाश्त कर लिया जाता है तबअन ताबे होकर, कमाफिल मुजारबती जैसे कि अक़्द मुजारबत के अंदर है। भाई मुजारबत के अंदर माल एक शख्स का होता है, तिजारत दूसरा करता है और नफे में दोनों शरीक होते हैं। मसलन मेरे पास माल है लेकिन मुझे तिजारत नहीं आती, जैद को तिजारत आती है लेकिन उसके पास माल नहीं है, तो मैं उसे अपना माल देता हूं कि इसके जरिए तिजारत करो और नफे के अंदर हम दोनों शरीक होंगे, तो इसको अक़्द मुजारबत कहते हैं। तवज्जो है? तो अक़्द मुजारबत में माल एक का होता है और मेहनत और अमल दूसरे का होता है। तो अब यहां पर ये जैद को मैंने अपना माल दिया है, तो जैद जो भी बेओशीरा कर रहा है वो मेरी तरफ से वकील होकर बेओशीरा कर रहा है। तो इसके अंदर देखो यहां तौकील बिल मजहूल लाजिम आ रही है। जैद को मैंने माल दिया है, वो जो भी चीजें खरीदे और बेचे उसके अंदर उसके नफे में हम शरीक होंगे, तो जैद को मैंने बेओशीरा के अंदर अपना वकील बना दिया है मुजारबत के अंदर। लेकिन क्या चीज वो खरीदेगा, कितना माल खरीदेगा, किससे खरीदेगा, ये सारा कुछ तो मजहूल है। वो तो उसकी मर्जी है, जहां उसको मुनासिब लगेगा वो चीजें खरीदता रहेगा और बेचता रहेगा। तो यहां पर भी देखो मुजारबत के अंदर भी दूसरे को मजहूल बेओशीरा पर वकील बनाना लाजिम आ रहा है। लेकिन चूंकि ये जो जहालत आ रही है ये ताबे होकर आ रही है, लिहाजा इसको बर्दाश्त कर लिया जाता है और बिल इत्तेफाक मुजारबत जायज है। यह माना है कमाफिल मुजारबती, जैसे अक्द मुजारबत के अंदर है कि उसके अंदर भी मजहूल चीज पर तौकील होती है, लेकिन वो जायज है भाई। आगे देखिए वला तनाकिदु इल्ला बिलफजतिल मुफावजती लिबुदी शराइतिहा अन इल्मिल अवामी। अवाम भाई, अवाम के अंदर ये मीम मुशद्दद है भाई, अन इल्मिल अवामी। यहां से साहिब हिदाया बयान फरमा रहे हैं कि दो अफराद जब आपस में अक्द मुफावजा करें तो उनके लिए जरूरी है कि वह मुफावजा का लफ्ज जिक्र करें। वजह यह है कि लोगों को मुफावजा की सारी शराइत का इलम ही नहीं होता, तो अगर वह अक्द मुफावजा करना चाहते हैं तो उनको सारी शराइत का तो पता नहीं, लेकिन कम अज कम लफ्ज तो मुफावजा वाला जिक्र करें जिससे पता तो चले कि अक्द मुफावजा कर रहे हैं। और अगर दोनों शरीक अक्द मुफावजा जिक्र नहीं करते लेकिन मुफावजा की सारी शर्तें जिक्र कर देते हैं तो फिर इस सूरत में भी अक्द मुफावजा ठीक हो जाएगा। तो कहते हैं वला तनाकिदु इल्ला बिलफजतिल मुफावजती, और शिरकत मुफावजा मुनाकिद नहीं होगी मगर मुफावजा के लफ्ज से। लिबुदी शराइतिहा, इस वजह से कि मुफावजा की शर्तें दूर हैं। अन इल्मिल अवामी, आम लोगों के इलम से, आम लोगों को इसकी सारी शर्तों का इलम नहीं होता, तो लिहाजा कम अज कम नाम जिक्र करें। हत्ता लौ बैयाना जमी अमा यक्तजी ही, बैयाना ये तस्निया का सीगा है भाई। हत्ता लौ बैयाना, यहां तक कि अगर दोनों ने बयान कर दिया जमी अमा यक्तजी ही, उन सारी शर्तों को जिसका तकाजा अक्द मुफावजा कर रहा है, यजूज़, फिर भी मुफावजा जायज है। अगर दोनों शरीकों ने मुफावजा की सारी शर्तें तो जिक्र कर दी लेकिन लफ्ज मुफावजा जिक्र नहीं किया, फिर भी अक्द मुफावजा ठीक हो जाएगा। इसलिए क्योंकि अगरचे लफ्ज जिक्र नहीं किया लेकिन माना तो उसी का जिक्र कर दिया भाई, माना यानी सारी चीजें तो उसी की जिक्र कर दी भाई। तो कहते हैं हत्ता लौ बैयाना जमी अमायक तजी ही यजूजु, यहां तक कि उन दोनों ने उस अक्द मुफावजा की उन तमाम चीजों को जिक्र कर दिया जिसका अक्द मुफावजा तकाजा करता है, यजूजु, तो ये भी जायज है। लिअन्न अल-मुअतबर हुवल माना, इसलिए क्योंकि वो चीज जिसका एतबार किया जाता है वो माना है, लफ्ज असल नहीं है बल्कि माना असल है। लफ्ज के जरिए तो एक माना दूसरे तक पहुंचाया जाता है, तो लफ्ज एक वसीला है माना को पहुंचाने का, तो असल मकसूद माना है। लिहाजा अगर इन्होंने बेशक मुफावजा का लफ्ज जिक्र नहीं किया लेकिन उसके सारी शर्तें वगैरह जिक्र करके माना के एतबार से गोया मुफावजा ही को जिक्र कर दिया, और माना ही का तो एतबार है, लिहाजा ये अक्द मुफावजा सही हो जाएगा। ये माना है ले अन्नल मुअतबरा हुवल माना, इसलिए क्योंकि वो चीज जिसका एतबार किया जाता है वो माना है। قال صاحب قدوری فرماتے ہیں فيجوز بين الحرين الكبيرين مسلمين او ذميين। यहां से आप तफसील बयान फरमाने लगे हैं भाई। साहिब हिदायत ने आपको बतलाया था कि अक्द मुफावजा के अंदर बराबरी जरूरी है, दोनों शरीक माल में भी बराबर हों, तसरुफ में भी बराबर हों और दीन के अंदर भी बराबर हों। तो आप वजाहत कर रहे हैं कि किस किस्म के दो अफराद हों तो उनमें अक्द मुफावजा जायज हो जाएगा क्योंकि उनमें ये सारी चीजें मौजूद हैं, और किन अफराद के अंदर बराबरी नहीं उनमें अक्द मुफावजा जायज नहीं। तो आपको बतलाएंगे कि दो आजाद मुसलमान आपस में अक्द मुफावजा करते हैं और ये दोनों माल के अंदर बराबर हैं तो फिर अक्द मुफावजा जायज है। क्योंकि माल में भी बराबर हो गए, तसरुफ के अंदर भी दोनों आजाद बालिग मुसलमान बराबर हैं, और नीज दीन के अंदर भी बराबर हैं कि दोनों मुसलमान हैं, या दो आजाद बालिग जिम्मी आपस में अक्द मुफावजा करते हैं, तो यहां पर भी दोनों जिम्मी जब माल के अंदर बराबर हैं और इसी तरह ये तसरुफ में भी और दीन में भी बराबर हैं, तो ये भी अक्द मुफावजा कर सकते हैं। लेकिन अगर एक आजाद है और एक गुलाम है, या एक बालिग है और एक नाबालिग है, तो इनमें अक्द मुफावजा नहीं हो सकता, क्योंकि यहां तसरुफ के अंदर बराबरी नहीं है। तो कहते हैं काल साहिब कुदूरी फरमाते हैं फयजूजु बैनल हुर्रैनिल कबीरैनी के अक्द मुफावजा जायज है दो आजाद बालिगों के दरमियान मुस्लिमैनी इस हाल में कि वो दोनों मुसलमान हों औ जिम्मीयैनी या इस हाल में कि दोनों जिम्मी हों लितहक्कुकित तसावी बराबरी पाए जाने की वजह से कि दोनों मुसलमान हैं या दोनों जिम्मी हैं और आजाद और बालिग हैं तो दोनों में बराबरी पाई जा रही है। व इनकान अहदुहुमा किताबियन वल आखरु मजूसियन यजूजु ऐजा, भाई ये बात मैं पहले भी बयान कर चुका हूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अलकुफ्रु मिल्लतुं वाहिदा, मिल्लत का माना है दीन, अलकुफ्रु मिल्लतुं वाहिदा, कुफर सारा का सारा एक ही दीन है, लिहाजा एक शख्स ईसाई है और एक शख्स यहूदी है तो दीन के एतबार से यह बराबर ही शुमार होंगे क्योंकि दोनों काफिर हैं, या एक शख्स ईसाई है और एक शख्स जो है मजूसी है तो दीन के एतबार से यह बराबर ही शुमार होंगे, लिहाजा एक ईसाई जो है वो एक यहूदी के साथ या मजूसी के साथ अक़्द-ए मुफावजा करता है तो दोनों के दीन अलग अलग नहीं शुमार होंगे, ये दोनों दीन के एतबार से बराबर शुमार होंगे, तो यह अक़्द-ए मुफावजा कर सकते हैं भाई। तो कहते हैं वह इन काना अहदुहुमा किताबियन, और अगर वो दो शरीकों में से एक जो है वो किताबी है यानी अहले किताब में से है, वल आखरु मजूसियन और दूसरा मजूसी है, यजूजु ऐजन फिर भी अक्द मुफावजा जायज है, लिमा कुलना उस वजह से जो हमने कहा कि यहां बराबरी पाई जा रही है भाई, क्योंकि अलकुफ्र मिल्लतों वाहिदा, कुफर सारा का सारा एक ही दीन है। वला यजूजु बैनल हुर्रि वल ममलूकी, और अक्द मुफावजा जायज नहीं है आजाद और गुलाम के दरमियान, वला बैन सबी वल बालिगी, और इसी तरह अक्द मुफावजा जायज नहीं है बच्चे और बालिग के दरमियान, लिनइदामिल मुसावाती बराबरी न होने की वजह से कि इनमें बराबरी नहीं, आजाद और गुलाम ये तसरुफ में बराबर नहीं और बच्चा और बालिग ये भी तसरुफ में बराबर नहीं। कहते हैं लिनइदामिल मुसावाती बराबरी न होने की वजह से, लिअन्नल हुर्रल बालिग यमलिकु तसर्रुफ वल कफालता, इसलिए क्योंकि आजाद और बालिग शख्स जो होता है वो तसर्रुफ का यानी तिजारत का भी मालिक होता है, उसको इस तसर्रुफ का हक होता है, उसको इस तसर्रुफ की विलायत होती है और इसी तरह उसको कफील बनने की भी विलायत हासिल होती है, वो किसी को जमानत देना चाहे तो जमानत दे सकता है यानी वो किसी का कफील बनना चाहे तो कफील बन सकता है, तो आजाद बालिग आदमी उसको तिजारत की भी विलायत है और कफालत की भी विलायत है। तो कहते हैं लिअन्न अल-हुर्रल बालिगा यमलिकु तसर्रुफ वल कफालता, इसलिए क्योंकि आजाद बालिग आदमी जो है वो तसर्रुफ और कफालत का मालिक है यानी उसे इन चीजों की विलायत हासिल है, वल ममलूकु ला यमलिकु वाहिदम मिनहुमा इल्ला बिइज्निल मौला, और ममलूक तो इन दोनों में से किसी एक चीज का भी मालिक नहीं है, इल्ला बिइज्निल मौला मगर अपने आका की इजाजत से, ममलूक यानी गुलाम जो है ना तो उसे तिजारत की विलायत है ना उसे किसी का जामिन बनने की विलायत हासिल है, तो लिहाजा आजाद और गुलाम में अक्द मुफावजा नहीं हो सकता, आजाद आदमी को तो तिजारत की भी विलायत और कफालत की भी विलायत, और गुलाम को तो तिजारत और कफालत की विलायत नहीं होती मगर अपने आका की इजाजत से, आका इजाजत देगा तो फिर गुलाम तिजारत कर सकता है या किसी का कफील बन सकता है भाई। तो कहते हैं वल ममलूक ला यमलिकु वाहिदम मिनहुमा इल्ला बिइज्निल मौला, मगर गुलाम जो है वो इन दोनों में से किसी एक चीज का भी मालिक नहीं होता, इल्ला बिइज्निल मौला मगर अपने आका की इजाजत से। तो यहां सवाल पैदा होता है कि आपने बतलाया कि गुलाम ना तो तिजारत की विलायत है उसे और ना उसे कफालत की विलायत है, लेकिन आका उसे इजाजत दे दे फिर तो उसे यह विलायत हासिल हो जाती है, तो अगर आका अपने गुलाम को तिजारत की भी इजाजत दे दे और कफील बनने की भी इजाजत दे दे, फिर तो अब आजाद आदमी और गुलाम के अंदर बराबरी आ गई जी। आजाद आदमी और गुलाम में बराबरी आ गई। अब तो दोनों के दरमियान, आजाद और गुलाम के दरमियान आपदे मुफावजा दुरुस्त होना चाहिए जी। तो उलमा फरमाते हैं कि नहीं, अगर आका इजाजत दे दे फिर भी बराबरी नहीं आई, वजह यह कि तिजारत के अंदर अगर गुलाम को नुकसान हुआ और गुलाम मदयून बन गया, तो ये जो मदयून गुलाम है ये किसी का कफील नहीं बन सकता, हत्ता कि आका इसको इजाजत दे दे फिर भी इसकी कफालत जायज नहीं है। भाई इसके तो अपने ऊपर दैन है, दूसरों के दैन की जमानत ये कैसे दे सकता है भाई जी। तवज्जो है, लिहाजा गुलाम को आका इजाजत दे भी दे फिर भी उसकी आजाद आदमी के साथ कफालत में बराबरी ना आए, क्योंकि गुलाम अगर मदयून हो गया तिजारत में तो फिर चाहे आका की इजाजत ही क्यों ना हो फिर भी वो किसी का कफील और जामिन नहीं बन सकता। आगे देखिए, वसबीयुला यमलिकुल कफालता, और बच्चा जो है वो कफालत का मालिक नहीं होता, बच्चा किसी का जामिन नहीं बन सकता क्योंकि बच्चे से दैन का मुतालबा नहीं किया जा सकता। याद रखो, आगे आपको बतलाएंगे कि बच्चा तिजारत भी नहीं कर सकता, लेकिन अगर उसका वली बच्चे को इजाजत दे दे तो फिर बच्चा तिजारत कर सकता है, लेकिन बच्चा कफील नहीं बन सकता, हत्ता कि वली इजाजत दे दे फिर भी बच्चा किसी की जमानत नहीं दे सकता। तो बच्चे का कफील बनना ये वली की इजाजत से भी जायज नहीं, अलबत्ता वली तिजारत की इजाजत दे तो बच्चा तिजारत कर सकता है भाई, जब वो समझदार है, चीजों को समझता है। तो कहते हैं वसबी युला यमलिकुल कफालता, और बच्चा जो है वो कफालत का मालिक नहीं, यानी उसे कफालत की विलायत नहीं, चाहे वली इजाजत ही क्यों ना दे दे। वला यमलिकु तसर्रुफ इल्ला बि इज्निल वली, और बच्चा जो है तसर्रुफ का यानी तिजारत का भी मालिक नहीं है, इल्ला बि इज्निल वली, मगर अपने वली की इजाजत से। आगे देखिए, काला वला बैनल मुस्लिमी वल काफिर, काला साहिब कुदूरी फरमाते हैं वला बैनल मुस्लिमी वल काफिरी, और आकद मुफावजा जायज नहीं है मुसलमान और काफिर के दरमियान। भाई आपको साहिब हिदाया ने बतलाया था कि आकद मुफावजा करने वाले दोनों शरीकों का दीन के अंदर भी बराबर होना जरूरी है, अगर एक मुसलमान है और दूसरा काफिर है, जिम्मी है, तो इन दोनों के दरमियान भी आकद मुफावजा नहीं हो सकता क्योंकि यहां बराबरी नहीं है। काफिर जो है वो शराब और खिंजीर में तसर्रुफ कर सकता है और मुसलमान शराब और खिंजीर में तसर्रुफ नहीं कर सकता, तो बराबरी ना रही। जब बराबरी ना रही तो आकदे मुफावजा की तो बुनियाद ही बराबरी पर है, लिहाजा इनमें आकदे मुफावजा जायज नहीं भाई। तो कहते हैं काल साहिब कुदूरी फरमाते हैं वला बैन अल मुस्लिमी वल काफिरी, और आकद मुफावजा जायज नहीं है मुसलमान और काफिर के दरमियान। वहादा कौलु अबी हनीफा व मुहम्मदिन रहिमहुमल्लाह तआला, और ये तारफेन रहिमहुमल्लाह का कौल है, वो फरमाते हैं मुसलमान और जिम्मी में आकद मुफावजा जायज नहीं। वकाल अबू यूसुफ रहमुल्लाह यजूज़ु, और इमाम अबू यूसुफ रहमुल्लाह फरमाते हैं कि जायज है, यानी मुसलमान और काफिर में अक़्द मुफावजा जायज है। लितसावी बैनहुमा फिल वकालती वल कफालती, बवजह इसके कि दोनों के दरमियान बराबरी पाई जा रही है वकालत और कफालत में। जैसे मुसलमान के लिए वकील बनना और बनाना जायज, इसी तरह जिम्मी के लिए भी, और जैसे मुसलमान के लिए कफील बनना जायज है इसी तरह जिम्मी के लिए भी कफील बनना जायज है, तो वकालत और कफालत में बराबरी है भाई। तो कहते हैं इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि मुसलमान और काफिर के दरमियान आकद मुफावजा जो है जायज है। लितसावी बैनहुमा फिल वकालती वल कफालती, इस वजह से कि बराबरी है दोनों के दरमियान वकालत और कफालत में। वला मुअतबरा बिज़ियादति तसर्रुफिन यमलिकुहु अहदुहुमा, भाई तरफैन फरमाते थे कि मुसलमान और काफिर के दरमियान बराबरी नहीं, क्योंकि काफिर जो है वो शराब और खिंजीर की बेउशिरा कर सकता है और मुसलमान ये तसर्रुफ नहीं कर सकता, तो तसर्रुफ में बराबरी ना आई। तो इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह की दलील चल रही है, वो फरमाते हैं अगर किसी एक को कुछ जायद तसर्रुफ भी हासिल है तो उसका कोई एतबार नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लिहाजा मुसलमान और काफिर में अक़्द मुफावजा जायज है। तो कहते हैं वला मुअतबरा बिज़ियादती तसर्रुफिन, और कोई एतबार नहीं है ऐसे तसर्रुफ की ज्यादती का, यमलिकुहु अहदुहुमा, के जिसका इन दोनों में से एक मालिक है। किसी ऐसे तसरुफ की ज्यादती का कोई एतबार नहीं जिसका इन दोनों में से एक मालिक है। भाई फिर तर्जमा देख लीजिए, कहते हैं वला मुअतबरा बिज़ियादती तसरुफी यमलिकुहू अहदुहुमा, और कोई एतबार नहीं है ऐसे तसरुफ की ज्यादती का कि इन दोनों में से एक उसका मालिक हो। कल मुफावजती बैन शफावी वल हनफी, जैसे कि अक्द मुफावजा होता है शाफियुल मसलक और हनफी के दरमियान। शफावियो ये निस्बत है इमाम शाफी रहमतुल्लाह की तरफ, जैसे हनफियुन निस्बत है इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह की तरफ। तो इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह की दलील चल रही है, वो फरमाते हैं तसरुफ में बराबरी जरूरी नहीं है, अगर एक को कुछ तसरुफ जायद भी हासिल है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे जैसे एक शाफियुल मसलक और एक हनफी के दरमियान बिल इतफाक अक्द मुफावजा जायज है, अगरचे शाफियुल मसलक जो है उसको कुछ जायद तसरुफ हासिल है। भाई देखिए, याद रखिए, जब भी जबीहे को जिबा किया जाएगा तो उस पर अल्लाह का नाम लिया जाता है, लेकिन अगर जबीहे को जिबा करते हुए अगर किसी शख्स ने अल्लाह का नाम नहीं लिया तो यह जबीहा हुआ मतरूक तस्मिया, यानी जिस पर अल्लाह का नाम नहीं लिया गया। तो यह जो जबीहा है मतरूक तस्मिया, क्या यह हलाल है या हराम है? तो आप तफसील पढ़ चुके हैं कि अगर जिबा करने वाला अल्लाह का नाम जिक्र करना भूल गया तो फिर इस सूरत में यह जबीहा हलाल है, इस सूरत में यह जबीहा हलाल है। लेकिन अगर उसने जानबूझकर अल्लाह का नाम नहीं लिया तो यह हुआ मतरूक तस्मिया आमदन, यानी वो जबीहा जिस पर जानबूझकर बिस्मिल्लाह को छोड़ा गया है। और आप पढ़ चुके हैं इंदल अहनाफ मतरूक तस्मिया आमदन जबीहा जो है वो हराम है, वो गैर मुतकविम हो गया, इसका खाना भी हराम और इसकी बेउशिरा भी हराम है। जबकि इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि अगर जिबा करने वाला जान बूझ कर भी अल्लाह का नाम छोड़ दे फिर भी वो जबीहा हलाल है जब जिबा करने वाला मुसलमान है, क्योंकि अल्लाह का नाम तो हर मुसलमान के दिल में मौजूद है। लिहाजा इमाम शाफी रहमतुल्लाह के नजदीक ये जो जबीहा है जो मतरूक तस्मिया आमदन है यह हलाल है और इसकी बेउशिरा भी जायज है। तो दलील चल रही है इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह की, वो फरमाते हैं कि मुसलमान और काफिर के दरमियान अक़्द मुफावजा जायज है, अगरचे काफिर को कुछ जायद तसरुफ हासिल है लेकिन उसका कोई एतबार नहीं। ये इसी तरह है, वो फरमाते हैं जैसे एक शाफियुल मसलक और हनफी के दरमियान बिल इतफाक अक़्द मुफावजा जायज है, अगरचे शाफियुल मसलक जो है उसको कुछ जायद तसरुफ हासिल है, वो मतरूक तस्मिया आमदन के अंदर भी तसरुफ कर सकता है, जबकि इंद अल अहनाफ मतरूक तस्मिया आमदन के अंदर तसरुफ जायज नहीं है, वो हराम है, वो मुर्दार है। भाई बात समझ में आ गई? तो कहते हैं कल मुफावजती बैन शफावी वल हनफी, जैसे कि अक्द मुफावजा होता है एक शाफई और हनफी के दरमियान। फइन नहा जायजतुन, इसलिए क्योंकि ये जायज है। व यतफावतानि फी तसर्रुफी फी मतरूकी तस्मियति, और ये दोनों जो हैं यानी शाफई और हनफी ये तो मुख्तलिफ हैं फी तसर्रुफी फी मतरूकी तस्मियति, मतरूकु तस्मिया के अंदर तसर्रुफ के अंदर एक के नजदीक तसर्रुफ जायज है दूसरे के नजदीक जायज नहीं। तो जैसे शाफई और हनफी के दरमियान मुफावजा जायज है तो मुसलमान और काफिर के दरमियान भी अक़्द मुफावजा जायज है। इल्ला अन्नहु युकरहु, मगर यह कि यह मकरूह है। इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह की बात चल रही है, वो फरमाते हैं मुसलमान और काफिर में अक़्द मुफावजा जायज है लेकिन यह मकरूह है। वजह यह कि अक़्द मुफावजा के अंदर दोनों बेउशिरा करेंगे और काफिर को तो पता नहीं है कि कौन से अक़्द जायज हैं और कौन से अक़्द जायज नहीं है। भाई तो कहते हैं इल्ला अन्नहु युकरहु, मगर यह कि यह मुसलमान और काफिर के दरमियान अक़्द शिरकत मकरूह है। लिअन्न ज़िम्मिया ला यहतदी इलल जाइज़ी मिनल उक़ूदी, लिअन्न ज़िम्मिया, इसलिए क्योंकि वो शख्स जो जिम्मी है ला यहतदी, उसकी रहनुमाई नहीं होती, उसे पता नहीं चलता इलल जाइज़ी मिनल उक़ूदी, अक़्दों में से जायज का उसकी रहनुमाई नहीं होती, यानी उसे पता नहीं होता अक़्दों में से कौन से अक़्द जायज हैं और कौन से जायज नहीं है। भाई तो कहते हैं लिअन्ना जिम्मी अला यहतदी इलल जाइज़ मिनल उकूदी, इसलिए क्योंकि जिम्मी जो है उसकी रहनुमाई नहीं होती उन आकदों की तरफ जो जायज हैं। वलहुमा, अब तरफेन की दलील आ गई। तरफेन फरमाते हैं मुसलमान और काफिर के दरमियान आकद मुफावजा जायज नहीं, क्योंकि यहां तसरुफ में बराबरी नहीं। जिम्मी जो है शराब और खंजीर में तसरुफ कर सकता है और मुसलमान यह तसरुफ नहीं कर सकता। तो कहते हैं वलहुमा, और तरफेन की दलील यह है कि अन्नहु ला तसावीया फी तसरुफी, कि मुसलमान और काफिर के दरमियान तसरुफ में बराबरी नहीं है। फइन्ना जिम्मी लव इश्तरा बिरअसिल माली, इसलिए क्योंकि जिम्मी अगर खरीदता है बिरअसिल माली रसुल माल के बदले, रसुल माल वो सरमाया वो जो दोनों ने माल आपस में मिलाया है। कहते हैं फइन्ना जिम्मी या लविश तरा बिरअसिल माली, इसलिए क्योंकि जिम्मी रसुल माल के जरिए अगर खरीदता है खुमूरन औ खनाजीरा शराबों को या खिंजीरों को, साहा तो ये उसका तसारुफ सही है। वलविश तरा हा मुस्लिम ला यसिहु, और अगर मुसलमान इनको खरीदता है तो सही नहीं, तो तसारुफ के अंदर बराबरी न रही। आगे देखिए वला यजूज़ु बैनल अब्दैनि वला बैनस सबियैनि वला बैनल मुकातबैन, यहां से बतला रहे हैं कि दो नाबालिग आपस में अक़्द मुफावजा करते हैं या दो गुलाम आपस में अक़्द मुफावजा करते हैं, चाहे आम गुलाम है या चाहे मुकातब हैं, ये अक़्द मुफावजा सही नहीं, क्योंकि अक़्द मुफावजा के अंदर दोनों शरीक एक दूसरे के वकील भी होते हैं और जामिन भी होते हैं, जबकि गुलाम और बच्चा इनको तो कफालत की विला यत हासिल नहीं है भाई। तो कहते हैं वला यजूज़ु बैनल अब्दैनी, और आकदे मुफावजा जायज नहीं है दो गुलामों के दरमियान, वला बैनस सबियैनी और ना दो बच्चों के दरमियान, वला बैनल मुकातबैनी और ना दो मुकातबों के दरमियान, लिनइदामि सिहतिल कफालती, कफालत के सही होने के मादूम होने की वजह से, कि कफालत का सही होना यहां मादूम है कफील नहीं बन सकते। तो कहते हैं लिन इदाम इसे खतिल कफालती, कफालत की सेहत का मादूम होने की वजह से, वफी कुल मौज इल्लम तसिहुल मुफावजतु, साहिब हिदायत बतला रहे हैं कि अगर दो आदमी शिरकत करते हैं अक़्द मुफावजा वाली और वहां अक़्द मुफावजा दुरुस्त नहीं बन रहा किसी शर्त के न पाए जाने की वजह से, तो वो अक़्द शिरकत खुद ब खुद शिरकत इनान बन जाएगा। दो आदमी आपस में शिरकत मुफावजा करते हैं लेकिन वहां मुफावजा की शर्तें पूरी नहीं, तो वो खुद ब खुद शिरकत ऐनान बन जाएगा, बशर्ते के ऐनान की शर्तें पूरी हों। तो कहते हैं वफी कुल मौज़ईन, और हर ऐसे मकाम के अंदर कि लम तसिहल मुफावजा तू, जहां मुफावजा सही न हो, लिफकदी शर्ती हा, मुफावजा की शर्त न पाए जाने की वजह से, वो जगह जहां मुफावजा सही नहीं, लिफकदी शर्तिहा, मुफावजा की शर्त न पाए जाने की वजह से, वला युश्तरतु ज़ालिका फिल ऐनानी, इस हाल में कि ऐनान में वो शर्त न हो, एक शर्त मुफावजा में जरूरी थी वो नहीं पाई जा रही और ऐनान में वो शर्त जरूरी नहीं, तो फिर ये अक़्द मुफावजा अक़्द ऐनान बन जाएगा भाई। तो कहते हैं कान ऐनानन, तो ये आकद जो है अकद ऐनान हो जाएगा जी। इबारत पे नजर है, फिर इबारत देख लीजिए, वफी कुल मौज़िन लम तसिहल मुफावजतु लिफकदी शर्तिहा वला युश्तरतु ज़ालिका फिल ऐनानी कान ऐनानन, तो ये दरमियान से ये निकाल दें लिफकदी शर्तिहा वला युश्तरतु ज़ालिका फिल ऐनानी, और बाकी को जोड़ें तो बात वाज़े हो जाएगी। वफी कुल मौज़िन लम तसिहल मुफावजतु, और हर ऐसा मकाम जहां मुफावजा सही ना हो, कान ऐनानन, तो वो अक़्दे ऐनान हो जाएगा। लिस्तिजमा इशारा इतिल ऐनानी, ऐनान की शर्तों के जमा होने की वजह से, कि वहां ऐनान की शर्तें जमा हैं। इस वक़द यकूनु खासन वक़द यकूनु आमन, तो सवाल पैदा होता है कि शिरकत मुफावजा जो है वो तो आम होती है तमाम तिजारतों में, वहां किसी पर कोई कैद नहीं होती कि फुला तिजारत करनी है और फुला तिजारत नहीं करनी, तवज्जो है, जबकि शिरकत ऐनान के अंदर तो आम तौर पर तिजारत मुअय्यन होती है कि दो आदमी मिलकर मसलन कपड़े की तिजारत करते हैं, या दो आदमी मिलकर मवेशियों की तिजारत करते हैं, या दो आदमी मिलकर बर्तनों की तिजारत करते हैं, तो आपने कहा शिरकत मुफावजा सही न रहे तो वह शिरकत ऐनान बन जाएगा, हालांकि शिरकत ऐनान तो खास तिजारत के अंदर होती है और मुफावजा तो आम होती है हर तिजारत के अंदर जी। उसमें दोनों को हर तिजारत की इजाजत होती है। तो उसका जवाब दे रहे हैं कि नहीं, शिरकत ऐनान उसमें भी तिजारत का खास होना जरूरी नहीं, ऐनान के अंदर भी दो आदमी आपस में आकद कर लेते हैं और एक दूसरे को इजाजत देते हैं कि आप जो भी तिजारत करना चाहें कर सकते हैं, बस नफे के अंदर दोनों शरीक होंगे भाई। तो मालूम हुआ ऐनान जो है जैसे वो खास हो सकता है यानी खास तिजारत के अंदर, इसी तरह वो आम भी हो सकता है। तो अक़्दे मुफावजा सही न रहा तो वो अक़्दे ऐनान बन जाएगा और तिजारत आम रहेगी उसी तरह भाई। तो कहते हैं तो ये ऐनान बन जाएगा, लिस्तिजमा इशारा इतिल ऐनानी, ऐनान की शर्तों के जमा होने की वजह से, इस वक़द यकूनु खासन वक़द यकूनु आमन, इसलिए क्योंकि शिरकत ऐनान जो है वो कभी खास होता है और कभी आम होता है, यानी तमाम तिजारतों की उसमें इजाजत होती है। आगे देखिए, काल वतन आकिदु अलल वकालति वल कफालति। भाई मैंने आपको बतलाया था कि अक़्द मुफावजा करने वाले दोनों शरीक एक दूसरे के वकील भी हैं और एक दूसरे के कफील भी हैं, अब वही बयान कर रहे हैं और आपको बतलाएंगे दोनों एक दूसरे के वकील होंगे। वजह यह है ताकि उस माल के अंदर तसर्रुफ जायज हो जाए। दोनों ने माल मिलाया है, दो आदमियों ने अक़्द मुफावजा किया है, माल मिलाया है, तो आधा माल एक का है आधा माल दूसरे का है, उसको उन्होंने मिला दिया, तो इस माल के अंदर तसर्रुफ की इजाजत तभी हो सकती है जब दोनों एक दूसरे के वकील हों। तो हर एक को इस माल में तसर्रुफ की इजाजत होगी क्योंकि इसमें उसका अपना भी हिस्सा है और दूसरे की तरफ से वो वकील भी है, और नीज इसी वजह से जो नफा आएगा उसके अंदर भी दोनों की शिरकत होगी, क्योंकि इन दोनों शरीकों में से जो शख्स जो भी आकद करेगा बेउशिरा वाला, तो उसके अंदर वो अपने लिए भी वो आकद कर रहा है और दूसरे की तरफ से वकील होकर भी आकद कर रहा है, तो लिहाजा इसमें नफे के अंदर भी दोनों फिर शरीक हो जाएंगे जी। और नीस दोनों एक दूसरे के कफील भी होंगे। वजह यह कि तिजारत के अंदर जब आप बेउशिरा करते हैं, जब आप कोई चीज खरीदेंगे तो आपसे समन का मुतालबा किया जाता है, तो यहां बराबरी के लिए जरूरी है कि अगर आपसे मुतालबा किया जा सकता है तो आपके शरीक से भी मुतालबा होना चाहिए, फिर ही बराबरी रहेगी। अगर आपसे मुतालबा हो सकता है और आपके शरीक से मुतालबा नहीं हो सकता, यह तो बराबरी ना रहेगी भाई। लिहाजा बराबरी के लिए जरूरी है कि समन और देन वगैरह का मुतालबा दोनों से हो सके, और वो उसी सूरत में हो सकता है जब दोनों एक दूसरे के कफील हों हर आकद के अंदर भाई। तो कहते हैं काल साहिब कुदूरी फरमाते हैं, वतन आकिदु अलल वकालती वल कफालती, और ये शिरकत मुफावजा जो है ये मुनाकिद होता है वकालत और कफालत पर। अगरचे वो वकालत और कफालत को जिक्र न करें लेकिन जब उन्होंने लफ्ज मुफावजा को जिक्र कर दिया तो अब दोनों एक दूसरे के वकील भी हैं और कफील भी हैं। अब उसकी वजह क्या है, क्यों वकील और कफील है, मैंने बयान कर दी, साहिब हिदायत उसी को अब बयान फरमा रहे हैं। कहते हैं अमल वकालतु, तो वकील होना फली तहक्कुकिल मकसूदी, तो वो इसलिए है ताकि मकसूद पाया जाए, वह शिरकतु फिल माली, और वो माल के अंदर शिरकत है, अला मा बय्यन्नाहु, उस वजह से जो हमने बयान कर दिया। भाई दोनों एक दूसरे के वकील होंगे, दोनों ने माल मिलाया है, एक आदमी अपने माल में तो तसरुफ कर सकता है, गैर के माल में तो तसरुफ नहीं कर सकता, तभी तसरुफ कर सकता है जब दूसरा इसको अपना वकील बना दे कि मेरी तरफ से भी तुम्हें तसरुफ की इजाजत है भाई। तो कहते हैं अमल वकालतु, तो वकील होना जो है फली तहक्कुकिल मकसूदी, तो वो इसलिए है ताकि मकसूद पाया जाए, वह शिरकतु फिल माली, और वो माल के अंदर शिरकत है, अला मा बय्यन्नाहु, उस वजह से जो हमने बयान कर दिया कि माल में शिरकत होगी तो फिर नफे के अंदर भी शिरकत होगी, और नफे में शिरकत ही तो मकसूद है भाई यहां पर। तो कहते हैं अला मा बय्यन्नाहु, उस वजह से जो हमने बयान कर दिया, वह अमल कफालतु, और बाकी कफालत पर भी ये शिरकत मुनाकिद होगी, लितहक्कुकिल मुसावाती, ताकि बराबरी पाई जाए, फी मा उस चीज के अंदर, हुआ मिन मवाजिबी तिजारती, जो तिजारत के मुक्तजयात में से है। भाई तिजारत के अंदर मैंने आपको बतलाया आप बेउ शिरा करते हैं तो आप पर देन भी आता है और आपसे देन का मुतालबा भी होता है, तो अब बराबरी के लिए जरूरी है जैसे आपसे मुतालबा हो सके आपके साथी से भी मुतालबा हो सके, और वो तभी हो सकता है जब हर आकद के अंदर वो आपका कफील हो यानी जामिन हो। भाई तो कहते हैं वह अमल कफालत उली तहकुकिल मुसावाती, और बाकी कफालत जो है वो बराबरी के पाए जाने के लिए है। फी मा हुआ मिम मवाजिबी तिजाराती, उन चीजों के अंदर जो तिजारत के मुक्तजायात हैं। मवाजिब जमा है मूजब की, और मूजब कहते हैं मुक्तजा यानी जिसकी कोई चीज तकाजा करे, तो तिजारत के जो मुक्तजायात हैं यानी तिजारत जिन चीजों का तकाजा करती है ताकि उनमें बराबरी हो जाए। तो कहते हैं तो कफालत जो है वो इसलिए ताकि बराबरी पाई जाए। फीमा हुआ मिम मवाजिबी तिजाराती, उन चीजों के अंदर जो तिजारत के मुक्तजायात हैं। वह हुआ तवज्जुहुल मुतालबती नहवहुमा जमीहा, और वो ये कि मुतालबा जो है वो मुतवज्जे हो उन दोनों की तरफ, देन वगैरह का मुतालबा दोनों की तरह मुतवज्जे होना चाहिए, फिर ही बराबरी है। कहते हैं वह हुआ तवज्जुहुल मुतालबती, और वो जो है मुतालबे का मुतवज्जे होना है। नहवहुमा जमीहा, उन दोनों की तरफ। काला साहिब कुदूरी फरमाते हैं वमा यश्तरी ही कुल वाहिद मिन्हुमा, यहां से यह बयान कर रहे हैं कि दोनों शरीक जो भी चीज खरीदेंगे वो शिरकत पर होगी, यानी उसमें दोनों शरीक होंगे। अलबत्ता अगर कोई शरीक अपने घर वालों के लिए गल्ला वगैरह खरीदता है या अपने लिए या अपने घर वालों के लिए कपड़े वगैरह खरीदता है तो इसके अंदर शिरकत नहीं होगी। अगरचे कियास तो यह तकाजा करता है कि जब दोनों ने अक़्द-ए मुफावजा किया है तो बराबरी जरूरी है, लिहाजा यह तकाजा करती है कि हर शिरा के अंदर दोनों शरीक हों, जो भी चीज दोनों में से कोई खरीदेगा दोनों को उसमें शरीक होना चाहिए, लेकिन इस्तेहसानन अपने घर वालों का खर्चा और कपड़े वगैरह इससे मुस्तस्ना है, क्योंकि इंसान इन चीजों का मोहताज है और अपने घर वालों का खर्चा तो दूसरे साथी पर नहीं डाला जा सकता। तो लिहाजा अपने और घर वालों के खर्चे और कपड़े वगैरह के लिए जो चीज वो खरीदता है वो इस अक़्द-ए शिरकत से मुस्तस्ना है, भाई उसमें दोनों की शिरकत नहीं होगी। कहते हैं वमा यश्तरी ही कुल वाहिद मिन्हुमा, और वो चीज जो इन दोनों में से हर एक खरीदता है तकून अला शिरकति, वो शिरकत पर होगी यानी उसमें दोनों शरीक होंगे। इल्ला ताम अहली ही व किस्वतहुम, मगर अपने घर वालों का ताम और उनके कपड़े। मैंने आपको बतलाया था ताम का लफ्ज जैसे आम खाने के लिए बोला जाता है इसी तरह गंदुम को भी ताम कहते हैं, गंदुम को भी ताम कहते हैं। तो आम तौर पर फिका की किताबों में जब ताम का लफ्ज आए तो इससे ये गंदुम ही मुराद होती है, भाई गंदुम जो गल्ला है भाई। तो कहते हैं इल्ला ताम अहली ही व किस्वतहुम, मगर अपने घर वालों का गल्ला और उनके जो कपड़े हैं। वह कजा किस्वतुहु, और इसी तरह इस शरीक के जो अपने कपड़े हैं वो भी शिरकत पर नहीं होंगे। वह कदल ईदामु, और इसी तरह जो सालन है अपने लिए या घर वालों के खाने के लिए सालन खरीदता है तो वो भी मुस्तस्ना होगा, वो भी शिरकत में दाखिल नहीं। तो कहते हैं वकदल इदामु, और इसी तरह सालन है। लिअन्न मुक्तज़ल अक़्दिल मुसावातु, इसलिए क्योंकि इस अक़्द-ए मुफावजा का मुक्तज़ा जो है वो बराबरी है। वकुल्लु वाहिदिन मिन्हुमा क़ाइमुन मक़ाम साहिबिही, और इन दोनों में से हर एक जो है वो अपने साथी का कायम मकाम है। फिर तसर्रुफी तसर्रुफ के अंदर, दोनों में से जो भी तसर्रुफ करता है चाहे बेअ वाला तसर्रुफ है चाहे शिरा वाला, वो अपने साथी का कायम मकाम है, उसकी तरफ से वकील है भाई। तो कहते हैं वकुल्लु वाहिदिन मिन्हुमा क़ाइमुन मक़ाम साहिबिही फी तसर्रुफी, और इन दो शरीकों में से हर एक अपने साथी का कायम मकाम है तसर्रुफ में। वकाना शिराउ अहदिहिमा का शिराइहिमा, और दोनों में से एक का खरीदना भी ऐसा ही है जैसे दोनों का खरीदना। इल्ला मस्तस्नाहु फिल किताबी, मगर वो जिसका इस्तिस्ना कर दिया साहिब कुदूरी ने किताब में यानी मुख्तसरुल कुदूरी में, कुदूरी में इस्तेस्ना कर दिया पीछे जो मतन आया कि अपने और अपने घर वालों के कपड़े और खाना वगैरह इससे मुस्तस्ना है। वकाना शिरा उ अहदिहिमा का शिरा इहिमा, और दोनों में से एक का खरीदना ऐसे ही है जैसे दोनों का खरीदना। इल्ला मस्तस्ना हुफिल किताबी, मगर वो जिसका इस्तेस्ना कर दिया साहिब कुदूरी ने अपनी किताब में, वह हुआ इस्तेहसान, और ये जो इस्तेस्ना है ये इस्तेहसान है। इन चीजों में शिरकत का ना होना ये इस्तेहसान है। कियास तो ये तकाजा करता है कि हर चीज में शिरकत होनी चाहिए, तो कहते हैं वह हुआ इस्तेहसान, और ये इस्तेहसान है। लिअन्नहु मुस्तस्नन अनिल मुफावजत लि जरूरती, इसलिए क्योंकि ये मुफावजा से मुस्तस्ना है, लि जरूरती जरूरत की वजह से, क्योंकि हर इंसान खाने पीने और पहनने का मोहताज है भाई। तो कहते हैं लिअन्नहु मुस्तस्नन अनिल मुफावजत लि जरूरती, इसलिए क्योंकि ये मुस्तस्ना है मुफावजा से जरूरत की वजह से। फइन्नल हाजत रातिबत मालूमतुल वुकू, हाजत रातिबा भाई, रातिब कहते हैं बरकरार रहने वाला रिजक, जैसे इंसान को दायमी तौर पर खाने पीने की हाजत होती है, हर रोज उसे खाने की हाजत है, इसी तरह हमेशा उसे कपड़े पहनने की हाजत है भाई। तो कहते हैं फइन्नल हाजत रातिबता, तो रातिबा का यहां माना कर लें दाइमी भाई। फइन्नल हाजत रातिबता, इसलिए क्योंकि दाइमी हाजत जो है मालूमतुल वुकू, उसका वाके होना मालूम है, सबको पता है कि इंसान की ये दाइमी हाजतें हैं, ये खाने पीने और पहनने की भाई। तो कहते हैं फइन्नल हाजत रातिबत मालूमतुल वुकूई, इसलिए क्योंकि दायमी हाजत जो है उसका वाक़े होना मालूम है। वला युमकिनु ईजाबुहु अला साहिबिही वला सर्फु मिन मालिही, भाई हर इंसान को ये खाने पीने और कपड़ों की हाजत है, और अपनी हाजत को दूसरे इंसान पर नहीं डाला जा सकता और ना उसके माल में से खर्च किया जा सकता है। तो हर शरीक का जो इस किस्म का खर्चा है वो उसी पर आएगा, ये उसके साथी पर भी नहीं और साथी के माल में से भी इसको अदा नहीं किया जा सकता। तो कहते हैं वला युमकिन ईजाबुहु अला साहिबी ही, और इस खर्चे को अपने साथी पर वाजिब करना मुमकिन नहीं है। वला सर्फ मिन मालिही, और ना उसके माल में से खर्च करना मुमकिन है। वला बुद्ध मिन शिराई, और खरीदना तो जरूरी है, इन चीजों का खरीदना, ये गल्ले और कपड़ों वगैरह का खरीदना तो जरूरी है। तो कहते हैं वला बुद्ध मिन शिराई, और खरीदना तो जरूरी है। फयख्तसु बिही जरूरतन, तो ये उसी के साथ खास होगा बाएतबार जरूरत के, ये जरूरत की वजह से उसी के साथ खास होगा। वल कियास, और कियास तो ये है कि यकून अल शिरकति लिमा बयन्ना, कि ये भी शिरकत पर होना चाहिए उस वजह से जो हमने बयान कर दिया। कियास तो ये तकाजा करता है हर चीज के खरीदने में शिरकत होनी चाहिए, क्योंकि फिर ही बराबरी हो सकती है भाई। यहां तक बात समझ में आ गई, आगे देखिए। वलिल बाई अन याखुज़ा बिस्समनी अय्युमा शाअ, भाई यहां से ये बतला रहे हैं अगर इन दोनों शरीकों में से एक ने अपने घर वालों के लिए कपड़े या गल्ला खरीद लिया, तो अब ये गल्ले और कपड़े के जो समन देने हैं ये उस पर दैन हो गया, तो क्या इस दैन का मुतालबा इसी शख्स से किया जाएगा, इसी शरीक से, या इसके साथी से भी उसका मुतालबा हो सकता है? कहते हैं मुतालबा दोनों से हो सकता है, इस दैन का मुतालबा दोनों से हो सकता है। हां अलबत्ता अगर इसके साथी ने वो दैन अदा कर दिया तो फिर वो इस पर रुजू करेगा, वो इस पर, मसलन उसके साथी ने मुश्तरका माल में से अदायगी कर दी, तो भाई ये खर्चा तो ये तो सिर्फ उस एक शरीक के घर वालों के लिए है, तो इसकी अदायगी तो मुश्तरका माल से नहीं होनी चाहिए, लिहाजा जितना हिस्सा उसका बनता है वो दूसरे साथी से वसूल कर लेगा। जी तवज्जो है, दूसरे साथी ने माले मुश्तरका में से अदायगी की है तो माले मुश्तरका के अंदर तो दोनों का माल है, तो कुछ माल तो उसी शरीक का है जिसने घर वालों के लिए गल्ला खरीदा है, और कुछ माल दूसरे शरीक का है, तो वो दूसरा शरीक अपने हिस्से के बकदर दूसरे पर रुजू कर लेगा। बात समझ में आ गई। तो कहते हैं वलिल बाई अन याखुज़ा बिस्समनी अय्युमा शाअ, कहते हैं वलिल बाई, और बाय के लिए जायज है, अन याखुज़ा बिस्समनी, कि वो समन की वजह से पकड़ ले, अय्युमा शाअ, जिसको भी इन दोनों में से चाहे, वो बाय जिसने देन वसूल करना है, समन वसूल करने हैं उस घर वालों के खर्चे के, तो वो बाय इस समन के अंदर दोनों शरीकों में से जिसको भी चाहे पकड़ सकता है, यानी जिससे भी चाहे मुतालबा कर सकता है। तो कहते हैं वलील बाजा भी समनी, और बाय के लिए जायज है कि वो समन की वजह से पकड़ ले, यानी वो मुतालबा कर सकता है। अयुमा शाह, इन दोनों में से जिससे भी चाहे। अल मुश्तरी बिल असालती व साहिबहू बिल कफालती, मुश्तरी को भी वो पकड़ सकता है यानी उससे भी मुतालबा कर सकता है। बिल असालती, असील होने की वजह से, क्योंकि मुश्तरी तो असील था, उसी ने तो ये गला खरीदा है उस बाय से, तो बाय मुश्तरी से भी मुतालबा कर सकता है और उसके शरीक से भी कर सकता है, क्योंकि शरीक हर शिरा में जामिन है दूसरे का। भाई तो कहते हैं अल मुश्तरी बिल असालती, तो बाय जो है मुश्तरी को भी पकड़ सकता है बिल असालती, उसके असील होने की वजह से। वसाहिबहू बिल कफालती, और उस मुश्तरी के साथी को भी पकड़ सकता है कफालत की वजह से। वयरजउल कफीलु अलल मुश्तरी बिहिस्सतिही बिमा अद्दा, भाई सूरत यह है दोनों शरीकों में से एक ने अपने घर वालों का गल्ला खरीदा एक बाएअ से, और बाएअ ने इसी मुश्तरी से समन नहीं वसूल किए बल्कि उसने इसके शरीक से समन वसूल कर लिए, और शरीक ने माले मुश्तरका से अदायगी कर दी, और माले मुश्तरका के अंदर तो कुछ माल तो दूसरे शरीक का है जो मुश्तरी है, और कुछ माल इस साथी का है, तो ये अपने हिस्से के माल में उस दूसरे पर रुजू कर लेगा, उसे वो वसूल कर लेगा। ये माना है वयरजउल कफीलु अलल मुश्तरी, और कफील जो है वो उस मुश्तरी पर रुजू करेगा बिहिस्सतिही उसके हिस्से के बकदर, बीमा अदा उस वजह से जो उसने अदा किया है। लिअन्नहु कजा दैनन अलैही, इसलिए क्योंकि इस कफील ने अदा किया है वो देन जो इस मुश्तरी पर था। मिम मालिम मुश्तरकिम बैनहुमा, उस माल में से जो दोनों के दरमियान मुश्तरक था। देन किस पर था? मुश्तरी पर। वो जो एक शरीक है मुश्तरी है, उसने गल्ला खरीदा है, तो वो देन जो मुश्तरी पर था कफील ने उसकी अदायगी की है माल मुश्तरका से, तो लिहाजा कफील का जो हिस्सा बनता है वो उस दूसरे से वसूल कर लेगा। ये माना है लिअन्नहु कजा दैनन अलैही, इसलिए क्योंकि कफील ने मुश्तरी पर जो दैन था उसको अदा किया है। मिम मालिम मुश्तरकिम बैनहुमा, उस माल से जो दोनों के दरमियान मुश्तरक है। काला फरमाते हैं वमा यलज़मुकुल लवाहिदिम मिन्हुमा मिनद दुयूनी बदलन अम्मा यसिहु फीहि लिश्तिराकु फल आखरु ज़ामिनुन लहू। यहां से साहिब हिदायत ज़ाब्ता जिक्र फरमा रहे हैं कि दोनों शरीकों पर जो दैन लाजिम आए तो किस दैन के अंदर दूसरे शरीक से उसका मुतालबा हो सकता है, और किस दैन के अंदर सिर्फ जिस पर दैन आया है उसी से मुतालबा हो सकता है, दूसरे शरीक से मुतालबा नहीं हो सकता। तो साहिबे हिदायत आपको बतलाएंगे कि वो दैन जो किसी ऐसे सबब से आया है जिसमें इश्तराक हो सकता है तो उसका मुतालबा दोनों से हो सकता है, और अगर वो दैन किसी ऐसे सबब की वजह से आया है कि उसमें इश्तराक नहीं हो सकता तो फिर उसका मुतालबा जिस पर दैन आया है उसी से हो सकता है, उसके शरीक से उसका मुतालबा नहीं हो सकता। तवज्जो है, देखो मिसालों से वजाहत होगी। मसलन एक शरीक ने तिजारत के अंदर गाड़ी खरीदी और फिर इस गाड़ी को वो आगे बेचेगा नफे के साथ, तो ये जो खरीदना है इसके अंदर शिरकत हो सकती है। आप एक गाड़ी खरीदें सिर्फ अपने लिए, ये भी हो सकता है, और आप एक गाड़ी खरीदें अपने और जैद दोनों के लिए। जैद आपसे कहता है भाई गाड़ी खरीद लेना, आधे पैसे मैं आपको बाद में दे दूंगा। तो देखो यहां आप गाड़ी खरीदते हैं, इस गाड़ी के खरीदने में शिरकत हो सकती है। तवज्जो है, तो इस गाड़ी के खरीदने की वजह से आप पर जो दैन लाजिम आया है आपके शरीक से भी उसका मुतालबा हो सकता है। तो वो दैन जो किसी ऐसे सबब की वजह से आया है जिसमें इश्तराक हो सकता है तो उसका मुतालबा दोनों से हो सकता है, जो अकद करने वाला है उससे भी और उसके शरीक से भी। और बाज औकात जो दैन आता है वो ऐसे सबब की वजह से आता है जिसमें शिरकत नहीं हो सकती, मसलन दोनों शरीकों में से एक ने कोई जिनायत कर दी, किसी का हाथ काट दिया और उसकी वजह से अब हाथ की दियत अदा करना पड़ेगी, तवज्जो है हाथ की, मसलन उसने जानबूझकर हाथ काटा है और जानबूझकर हाथ काटा जाए तो वहां किसास आता है, लेकिन अगर किसास मुमकिन ना हो, बराबरी नहीं हो सकती, तो फिर वहां दियत आती है और दियत जो है वो जुर्म करने वाले को अदा करना पड़ती है, उसके कबीले वाले अदा नहीं करते। तवज्जो है, क्योंकि उसने जानबूझकर जुर्म किया है। तो अब दोनों शरीक जो हैं उनमें से एक ने कोई जिनायत कर दी और जिनायत की वजह से इसके ऊपर अब दैन आ गया, अब इसको वो जमान देना पड़ेगा। तो ये जमान एक ऐसे सबब की वजह से आया है जिसमें शिरकत नहीं हो सकती। जुर्म जिसने किया है उसी पर जमान आता है, दूसरा उसके साथ जमान में शरीक नहीं हो सकता। तो लिहाजा ये दैन जिसने जिनायत की है सिर्फ उसी से मुतालबा हो सकता है, दूसरे से इसका मुतालबा नहीं हो सकता। या जैसे इन दोनों शरीकों में से एक आदमी निकाह कर लेता है तो निकाह करने वाले पर अब औरत का महर लाजिम हो गया, तो ये महर जो है ये निकाह की वजह से लाजिम आया है और उसके अंदर तो इश्तराक नहीं हो सकता, लिहाजा इस महर का मुतालबा सिर्फ उस निकाह करने वाले से ही हो सकता है, उसके शरीक से इसका मुतालबा नहीं हो सकता। या इसी तरह खुला है, एक औरत खावन को माल देकर अपनी जान उससे छुड़ाती है तो औरत को बदले खुला अदा करना पड़ेगा, यह उस औरत पर दैन बन गया। और इस औरत ने किसी के साथ अक्द मुफावजा कर रखा है तो ये जो बदले खुला औरत पर लाजिम हुआ इसका मुतालबा इसी औरत से हो सकता है, इसके शरीक से नहीं हो सकता। या इसी तरह दोनों शरीकों में से एक ने कत्ल आमद कर दिया, जानबूझकर कत्ल किया और उसकी वजह से किसास आया, लेकिन इसने मकतूल के औलिया से सुलह कर ली माल पर भाई, तो ये जो सुलह की वजह से माल वाजिब हुआ है, ये जो सुलह की वजह से माल वाजिब हुआ है, यह सिर्फ जिस शरीक ने जुर्म किया है उसी से इसका मुतालबा हो सकता है, इसका मुतालबा दूसरे शरीक से नहीं हो सकता। तो बात समझ में आ गई। तो मालूम हुआ वो दैन जो किसी ऐसे सबब की वजह से आए जिसमें शिरकत हो सकती है, उस दैन का मुतालबा दोनों शरीकों से हो सकता है। लेकिन अगर वो दैन ऐसे सबब की वजह से आया है जिसमें इश्तराक नहीं हो सकता तो उसका मुतालबा उसी शरीक से मुतालबा किया जा सकता है जिस पर दैन आया है, दूसरे शरीक से उसका मुतालबा नहीं किया जा सकता। तो कहते हैं वमा यल्जमु कुल्ल वाहिदि मिन्हुमा मीना दुयूनी, वमा यल्जमु कुल्ल वाहिदि मिन्हुमा, और वो जो इन दोनों में से हर एक पर लाजिम हो, मीना दुयूनी यानी के दुयून, ये दुयून ये बयान है मा यल्जमु का। तो मैंने आपको बतलाया था कि ऐसे मौके पर उस बयान को मुबय्यन की जगह ले जाएं तर्जमे के अंदर तो बेहतरीन तर्जमा हो जाएगा। तो अब ये मीना दुयून बयान है मा यल्जमु का, तो इस मा की जगह हम दुयून का लफ्ज लेंगे तर्जमे में, फिर बेहतरीन तर्जमा हो जाएगा। देखिए भाई कहते हैं वह मा यल्जमु कुल्ल वाहिदि मिन्हुमा मीना दुयूनी, और वो दुयून जो इन दोनों में से हर एक पर लाजिम होते हैं, बदलन अम्मा यसिहु फीहि लिश्तिराकु, उस चीज के बदले के तौर पर कि जिसके अंदर इश्तिराक सहीह है यानी जिसमें शिरकत हो सकती है, उसके बदले के तौर पर, फल आखरु जामिनुन लहू, तो दूसरा भी उस दैन का जामिन है जी। दोनों में से जिस पर भी दैन लाजिम आया वो एक ऐसी चीज के बदल के तौर पर है जिसमें शिरकत हो सकती है, तो फिर इसमें दूसरा भी उसका जामिन है। फिर तर्जमा देख लीजिए, कहते हैं वमा यल्जमु कुल्ल वाहिदि मिन्हुमा मीना दुयूनी, और वो दुयून जो इन दोनों में से हर एक पर लाजिम होते हैं, बदलन अम्मा यसिहु फीहि लिश्तिराकु, उस चीज के बदल के तौर पर जिसके अंदर इश्तिराक हो सकता है, तो फल आखरु जामिनुन लहू, तो दूसरा भी उसमें उसका जामिन होगा, तहकीकन लिल मुसावाति, मुसावात साबित करने के लिए, क्योंकि फिर ही मुसावात साबित होगी भाई कि दोनों से मुतालबा हो सके। फमीमा यसे हुफी ही इश्तराकू, अब बयान कर रहे हैं साहिब हिदाया किन चीजों में इश्तराक हो सकता है और किन चीजों में इश्तराक नहीं हो सकता। कहते हैं फमीमा यसे हुफी ही इश्तराकू, तो वो चीजें कि जिनके अंदर इश्तराक सही है, अशिरा उवल बै उवल इस्तीजारू, अशिरा उव खरीदना है, वल बै और बेचना है, वल इस्तीजारू और उजरत पर कोई चीज लेना, दोनों कोई चीज खरीदते हैं या दोनों कोई चीज बेचते हैं या दोनों उजरत पर कोई चीज लेते हैं, मसलन कोई मुलाजिम वगैरह उजरत पर रख लिया, तो इन चीजों के अंदर शिरकत जायज है, लिहाजा इसमें दोनों एक दूसरे के जामिन होंगे और जो दैन एक पर लाजिम आएगा दूसरे से भी उसका मुतालबा हो सकता है। तो कहते हैं वो चीजें जिनमें इश्तराक जायज है, अशिरा उल बै उल इस्तीजारू, वो खरीदना और बेचना और किराए पर लेना है, वह मिनल किस्म आखरी और दूसरी किस्म में से यानी जिसमें इश्तराक सही नहीं है, अल जिनायत वो जिनायत है, वन निकाह और निकाह है, वल खुलू और खुला है, व सुलह अंदमिल आमदी और सुलह अंदमिल आमद है, व अनी नफकती और नफके पर सुलह है और नफके पर सुलह है। जैसे आप जानते हैं भाई खावंद पर बीवी का नफका वाजिब है, लेकिन मसलन एक खावंद बीवी को नफका अदा नहीं कर रहा और इस पर मियां बीवी के दरमियान झगड़ा हुआ और बिलाखिर दोनों ने एक मुअय्यन मिकदार पर सुलह कर ली। मसलन खावंद ने कहा कि मैं तुम्हें हर हफ्ते का इतना नफका दिया करूंगा या हर महीने का मैं तुम्हें इतना नफका दिया करूंगा, तो यह नफका जो खावंद पर बीवी के साथ सुलह की वजह से वाजिब हुआ है यह खावंद के जिम्मे है। अगर यह खावंद अदा नहीं करेगा तो यह उसके जिम्मे दैन होता चला जाएगा। जैसे काजी खावंद पर नफके को वाजिब कर दे तो वो नफका खावंद के जिम्मे दैन होता चला जाता है। तवज्जो है, वैसे तो बीवी का नफका खावंद के जिम्मे है, लेकिन अगर खावंद अदा नहीं करता तो जूं जूं वक्त गुजरता जाएगा तो वो खावंद के जिम्मे दैन नहीं होता भाई, वो खावंद के जिम्मे दैन नहीं होता। लेकिन अगर नफके पर सुलह हो जाए किसी मुअय्यन मिकदार पर खावंद और बीवी के दरमियान, या काजी उस नफके को खावंद पर मुकर्रर कर दे कि हर हफ्ते का आपने इतना नफका बीवी को देना है, तो इन सूरतों के अंदर अगर खावंद अदा नहीं करेगा तो जूं जूं वक्त गुजरता जाएगा खावंद के जिम्मे यह सारा नफका दैन होता चला जाएगा। तो यह नफका जो सुलह की वजह से खावंद पर वाजिब हुआ है ये इसका मुतालबा इसी खावंद से किया जा सकता है, इस खावंद के शरीक से उसका मुतालबा नहीं किया जा सकता। बात समझ में आ गई? ये माना है वसुलह अन दमिल आमदी और वो सुलह जो दमे आमद से हो, व आनी नफकती और वो सुलह जो नफके से हो कि खावंद अपनी बीवी से नफके पर सुलह कर लेता है, कोई मुअय्यन माल मुकरर कर देता है हर हफ्ते का या हर महीने का। भाई बात समझ में आ गई भाई, हल हो गया। चलिए बस भाई, हादा हुआ अल मराम, अल्लाहु आलम बिहकीकतिल कलाम।